نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم DQ 21 میں پارہ نمبر 11 یا تذیرون دیکھیں گے. ذرا سے اس لفظ پہ نظریں جمائیے. اور وہ آپ سے عذر کریں گے, یعنی زندگی میں جب کبھی نیکیوں کا موقع آ جائے تو کچھ لوگ اس وقت معذور ہوتے ہیں یا پھر خود کو معذور سمجھتے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع لوگوں کے نصیب بنانے کا موقع تھا, ان کو سابقون الاولون میں شامل کرنے کا موقع تھا, اور صحابہ کرام نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا. جن تین لوگوں نے اس موقع کو اپنی ڈلی ڈیلی اور اپنی تساہل پسندی کی وجہ سے کھو دیا, آج ان کا بھی ذکر پڑیں گے. آج کا پورا پارہ آپ کو مجھے توبہ کرنے پہ مائل کرے گا, کیونکہ ہم وہ پارہ پڑھنے لگے ہیں کہ جس میں فرعون تک کی توبہ کی بات ہے اور قوم یونس کی توبہ ہے اور تین لوگوں کی توبہ جو ہے تھے سچے لیکن تھے سست. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تساہل پسند ہونا, ہماری کسل مندی اور ہماری سستی اور ہماری لیزینس ختم کر دے, اور خاص طور پہ وہ دین کے رستے میں جب ہوتی ہے. دنیا کے معاملات کو تو ہم چلا ہی لیتے ہیں, اور نہ بھی چلائیں گے تو لوگ پھر ہم سے لے لیں گے حق اپنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ لے کے جانے والا بنائے. پارے کا موضوع, اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں دورہ قرآن کا موضوع, میں آپ کی نبض چیک کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ ہدایت کے طالب ہیں. اس سال کا ہمارا ٹاپک ہدایت کی طلب رکھنے والا دل ہے, یعنی انوال قلوب میں جس دل کو ہم نے کسی ایک دن بھی مس نہیں کیا وہ ہے القلب الباحث عن الہدایہ. کیونکہ میں آپ کو جتنی بھی باتیں بتا دوں گی نا, ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے اگر ہدایت نہیں. آپ کو 30, 35, 40, 50 اقسام بھی اس دورہ قرآن کے اینڈ میں مل جائیں گی نا, فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے دل میں ہدایت نہ ہو. تو جب آپ ہدایت کی طلب سے سنتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنے والی ہوں کہ آپ 10 بار سننے کے بعد اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ ان میں سے ہوں کہ جنہوں نے سننا ہی چھوڑ دیا ہے. میں ان کے لیے دعا کروں گی کہ جو شروع سے سن رہے تھے اور اب تھوڑے ریلیکس ہو گئے یا خوف زدہ ہو گئے کہ یہ تو بہت زیادہ باتیں ہونے لگ گئی, تو اللہ ان کے دلوں کو جما دے. پھر اگلی پہ جا کے دیکھیے کہ تین گروہوں کی توبہ کا ذکر ہے اس بارے میں. پھر اس کے اندر فرعون کی توبہ کا ذکر ہے, قوم یونس کی توبہ کا ذکر ہے. ایک سوال آپ کا آپ سے اور میرا مجھ سے کہ آپ کس درجے پر ہیں, یہ ہم سب کے لیے ایک سول سرچنگ کوسچن ہے. آگے چلیں گے تو پارے کے مرکزی خیال کو دیکھیں گے. آج ہم سورت توبہ کی آیت 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. بس ابھی اتنا ہی دیکھیں گے, اگلا حصہ تو پھر ہم نے پڑھنا بھی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے کسی چیز کو خریدنے کی, اور ایسے لگتا ہے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. زندگی میں کئی بار آپ کو اس چیز کا اتفاق ہوا ہوگا کہ کوئی چیز آپ لینے گئے اور کوئی اور لے گیا, تو آپ پریشان تھے, دکھی تھے. بازار میں جاتی ہیں جو خواتین وہ دیکھتی ہیں جو چیز بہت سارے خریدیں, وہ کہتے ہیں یہی اچھی ہوگی. اسی طرح جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نا وہ مہنگی ہو جاتی ہے, اور یہ جو آپ سیل کے نام پہ بائی ون گیٹ ٹو فری اور 70% لے کر آتے ہیں نا, اصل میں یہ ان ڈیمانڈیڈ تھنگس ہوتی ہیں. سیل لگتی تب ہے کہ مال موجود ہے اور گاہک نہیں ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی پیغام دیا ہے کہ تمہارا یہ جسم کتنے کا بکے گا. کوئی گردے اور دل اور پھپھڑے اور الگ کر کے بیچ لے تو کیا دے گا, لیکن تمہارا رب تمہارے اس جسم کو کیسے خریدے گا, آج ہم یہ پڑھیں گے. پورے پارے میں سے آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے, اور آخر میں جس چیز پہ آپ پہنچیں گے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. ساری زندگی ہم اللہ سے اور اللہ کی بات سے اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے خود کو بچاتے رہے, اور آخر میں وہ پیارے جن کے ساتھ ہم چلتے گئے जिनके लिए हमने अपनी जिंदगियां गवा दी और खपा दी, वो हमें चार लोगों के सहारे पे कब्र में डाल जाएंगे और यही खत्म होगा। तो गोया कि अल्लाह ताला ने आपसे मुझसे क्या खरीदा। अब थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊंगी आयत के लफ्ज नफ्स पे कि दिल के लिए कुरान पाक में मुख्तलिफ अल्फाज जो इस्तेमाल हुए और आपने अल्हम्दुलिल्लाह रबिया कल्बी कोर्स में चारों दिन बात की अनवाल खुलूब में, उसमें ये सब डिटेल्स हैं। हमारे जो साथी वो मिस कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप इस दौरे कुरान के साथ साथ भी अगर एक्स्ट्रा टाइम पाते हैं कुछ सुनने को तो आप उसको सुनना शुरू कर दें, तो फिर अगले बारे आपको और भी समझ आएंगे। लेकिन दिल के लिए लफ्ज कल्ब भी है, फुआद भी है, सदर भी है, इसकी डिटेल्स वहां मौजूद है। यहां अल्लाह ताला ने ये आयत क्यों इस्तेमाल की कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम। आमतौर पर हम इसका तर्जुमा जान करते हैं ना, जानने, या अगर नफ्स को नफ्स रखे तो आइए जरा देखिए डिक्शनरी में नफ्स लफ्ज क्या 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 पेश करता है। लफ्ज नफ्स वो लफ्ज है दिल की अकसाम में से कि जो बजाते खुद दिल को भी और जान को भी रिप्रेजेंट करता है। आप इसके मुमकिन तर्जमे अगर लिखें तो रूह, जिंदगी, जी, जान, और इससे ख्वाहिशात फूटने की जगह मुराद है, यानी ख्वाहिशात का मबदाओ मलजा। लिखिए जरा अल्लाह आपसे क्या क्या खरीदना चाहता है इस बारे में। अल्लाह ताला आपकी रूह खरीदना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी खरीदना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपकी जी आपका जी खरीदना चाहते हैं, आपकी जान खरीदना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशात खरीदना चाहते हैं। वो जगह जहां से ख्वाहिशात फूटती हैं मबदा इबदा से और मलजा, सबको पता है इसका मतलब, यानी एक एक ख्वाहिश जो फूटती है उसको अल्लाह से खरीदना चाहते हैं, और आरजू करने वाला और खुश हो जाने वाला दिल मुराद है। आखिर में अल्लाह ये चाहेंगे कि आप आरजू करने लग जाएं कि अल्लाह मुझे अपने लिए कबूल कर लें। और याद रखिए ये फराइज से ऊपर की बात है, सुन्नत और नवाफिल की बात यहाँ नहीं है, यहाँ फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम की बात नहीं है। ये पारा आपको अल्लाह का बनाने वाला पारा है। अल्लाह ताला आपसे दूसरों की निस्बत ज्यादा मांगते हैं, पोशीदा बातों और ख्यालात को छुपाने के लिए नफूस और सदूर दोनों में ये लफ्ज आता है कुरान पाक में। अगर हम देखें तो कुरान पाक में ये लफ्ज कई मुख्तलिफ जगह पे आया है। वतुख्फी फी नफ्सी का मल्लाहु मुब्दीही, आप तो दिल में कोई चीज छुपा रहे थे, अल्लाह ने उसको जाहिर कर दिया। इसी तरह ख्वाहिशात का ताल्लुक नफ्स से होता है, ख्वाह वो अच्छी हो या बुरी। इन यत्तबेउना इल्ला ज़न्न वमा तख्फल अनफुस, और ये लोग महज ज़न और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं। इसी तरह इसका एक और मानी होता है खुश होने का, खुश होने का ताल्लुक भी नफ्स से होता है। ये मानी आया सूरत निसा के आचार में, फइन तिबना लकुम अन शयइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया। तो क्या पता चला, अब आप समझ जाइए अल्लाह आपकी ख्वाहिशें चुन लेना चाहता है, आपके आपके दिल की खुशी बनाना चाहता है इस सारी चीज को। सवाल ये है कि जब आप अल्लाह ताला के हाथों बिकने की बातें करते हैं तो इस आयत में बे बै और शरा की बात हो रही है, कैसे अल्लाह ताला आप इसको सुनते ही ऐसे लग रहा है कि किसी खरीदने और बेचने की बात, एक सौदा हो रहा है। तो अल्लाह ताला क्या खरीदता है, अल्लाह ताला बंदे से उसका नफ्स खरीदता है और उसके माल खरीदता है। आप देखिए इधर सिर्फ दो बातें हैं, यानी अल्लाह ताला ने मोमिन की जान और माल को खरीद लिया है, क्योंकि मोमिन का अजीज तर सरमाया ईमान होता है। आप जिंदगी में अपने देखें कहीं भी कोई चीज सौदा हो रहा हो ना तो तीन चीजें होती हैं, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, और तीसरी वो चीज जो बिकती है कमोडिटी, यानी सेलर बायर एंड कमोडिटी जो बिकती है। यहां खरीदने वाला कौन है, अल्लाह सुभान ताला। बिक क्या चीज रही है, आपकी जान और आपका माल, और डील क्या हो रही है, बदले में क्या है, किसी भी डील के बाद क्या होता है कि इंसान को इसके बाद कुछ मिलेगा। तो क्या पता चला कि मोमिन को अल्लाह के यहां अपनी चीजें बेचनी पड़ेंगी। और जिंदगी में जब भी कहीं आप अल्लाह के बनने वाले होंगे, अल्लाह की तरफ आएंगे, तो आपको मिलेगा, आप कह लीजिए कि जवाहिर खमसा, पांच बड़े जवाहिर, उनकी हिफाजत का एहतमाम करने का यहां हुक्म दिया जा रहा है। सबसे पहली चीज जिसको यहां बयान किया जा रहा है, मोमिनीन, ईमान। लिखिए अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन सूरत पे देखना चाहते हैं। دین اسلام ہو، انسان شریعت کے اوپر چلے، اللہ کے قرب کے راستے اختیار کرے، اس کی روح اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ مومن کا عزیز تر اور عزیز ترین سرمایہ ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت پریکٹیکلی کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پہ بس دو ہی چیزیں دی ہیں، ایک جان اور ایک مال، اور جان اور مال کے علاوہ کوئی تیسری چیز آپ کو نہیں دکھے گی، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا آپ کے میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی، وہ لاکھوں اور کروڑوں ہیں، بلکہ آگے سورۃ ابراہیم میں پڑھیں گے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کاؤنٹ لیس نعمتیں ہیں، لیکن اگر آپ ہر نعمت کو نیچے جا کر کسی پلڑے میں ڈالتے جائیں تو یہ دو چیزوں میں آئیں گی، یا آپ کی جان یا آپ کا مال، یعنی جسم اور جسم کی قوتیں جس میں سماعت ہے، بصارت ہے، یہ سب جان میں آئیں گے۔ اسی طرح روپیہ، پیسہ، مال، اولاد، جائیداد، گھر بار، تجارت، کھیتی باڑی، یہ سب مال کے ذمن میں آئیں گے۔ دیکھا جائے تو جان اور مال بلا تفریق کسی مذہب کے، کسی ملت کے، کم و بیش ہر انسان کو ملے ہیں، جان بھی ملی، مال بھی ملا، کوئی انسان ان دو چیزوں سے تہی دامن نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک فیض عام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے۔ ان دو چیزوں سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا انسان سے پہلا مطالبہ ایمان کا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ جو ہی ایمان کا مطالبہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات، پھر بات سمجھ آئے گی آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، کہ جب بھی اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے لوگوں سے کہا کہ آمنو، ایمان لے آؤ، انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی، کچھ نے ایمان لا کر مطالبہ پورا کر دیا، کچھ نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جو مان گئے ان کو اصطلاح میں مومن کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے یہ مطالبہ رد کر دیا، مسترد کر دیا، وہ کافر کہلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ہمارے سامنے رکھا سورۃ تغابن کی آیت نمبر 2 میں، ہو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے۔ اب جب آپ یہ دو کیٹیگریز دیکھتے ہیں دنیا میں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا بے و شرا کی اس کیفیت کو محسوس کیجئے۔ ایمان کے بارے میں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ اندیکھی حقیقتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ، فرشتے، ایمان، آسمانی کتابیں، رسول، آخرت، جنت، جہنم ہے، نبی کے کہنے پر ان عقائد کو مان لیا جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایمان کا ایک پہلو ہے، ایک تعلق ہے جو بندے اور رب کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ کیا سوچ رہی ہیں، میں کیا سوچ رہی ہوں، یہ کسی دوسرے کو نہیں پتا، اور یہ وہ تعلق ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں قائم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہیں یہ بیع و شراء ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک پلچ ہے، ایک ٹریٹی ہے، اور قرآن اس کو بیع کہتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اس معاہدے کے تحت مومن اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے عوض بیچ دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں آج آپ کے سامنے رکھا، اور یہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل میں اور اب قرآن میں، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو کون پورا کرتا ہے، اور تم خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر۔ اب اگر اس تمثیل کو دیکھیں تو اصل میں یہاں مجاہدین فی سبیل اللہ کی بات ہے۔ یہاں میں آپ سب میں سے ان کو پھر کہوں گی کہ جو ابھی مہاجرین ہیں، ابھی تو چھوٹی چھوٹی عادتیں چھوڑ رہے ہیں، ابھی تو صبح کی نیند چھوڑ رہے ہیں، ابھی تو نہ جانے کیا کیا چھوڑنا پڑے گا، وہ بالکل بے فکر ہوں، لیکن یہ پارا ہدایت کے اعتبار سے ان سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے جو الحمدللہ اس وقت مہاجرین سے اوپر اٹھ کر انصار بن چکے ہیں، دین ان کی زندگی میں آ چکا ہے۔ بلکہ ایک اور اینگل سے ایک جملہ بول دوں کہ یہ وعدہ، یہ معاہدہ جس کی اب بات ہونے لگی ہے، یہ اصحاب الیمین سے نہیں ہے، یہ السابقون الاولون میں ہونے کے شوقین لوگوں کے لیے۔ اور یہاں پھر میں اپنے بولے ہوئے چند جملے جو کئی دفعہ بولے تفاسیر میں پھر بول دوں، جینے کے دو ہی رنگ ہیں، ایک ہے کہ فرائض کی سطح پہ جیئے آپ، پانچ وقت کی نماز، رمضان کے روزے، گھرداری، شوہر کی دیکھ بھال، بچوں کو دیکھنا، انشاءاللہ جنت ملے گی، वो खराबियां और कोई ऑब्स्टिकल ना बीच में आ जाए तो ये आम दर्जे का एक बड़ा खूबसूरत दर्जा, सातों दरवाजे भी खोलने की अल्लाह ने इस पर खुशखबरियां सुनवा दी हमें। लेकिन एक रास्ता है अजीमत का। पहला क्या था, आप अपने लिए जीते हैं, अगला क्या है कि आप दूसरों के लिए जीते हैं, ये वादा उनसे है। इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो अगर आपको मेहनत का शौक नहीं, अभी आप ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। इस तमसील में मुजाहिदीन के अजर को इंतहाई बलीग अंदाज में पेश किया गया। अगर आप देखें तो इस माहदे को खरीदो फरोख्त का उनवान दिया गया। जाने अल्लाह तला की पैदा की हुई है और वही इनका मालिक है, माल भी उसी का है जो इसने अपने बंदों को अता किया। लेकिन इसके बावजूद इसने अपने फजलो करम से इन दोनों चीजों को बंदा मोमिन की मलकियत करार दे लिया। देखे ना, आपकी मेरी जान है तो नहीं, अगर अपनी मर्जी की होती तो कभी देते वापस, कभी नहीं, बूढ़े होके रुल रहा होता बंदा, लेकिन जान ना देता ना अपनी ना अपने प्यारों की। ये अलग बात है कि बुढ़ापे में हम अपने बुजुर्गों की जान के जाने के मुंतजिर हो चुके होते हैं, जहनी तौर पर या जुबान पे जेशक ना भी लाए तो है अल्लाह का, लेकिन उसने हमें मलकियत में दे दिया और अब कह रहे आओ मैं तुमसे खरीद लूं। जरा सोचिए, आपको कोई दे और बाद में आपसे खरीदे, और फिर मजे की बात देखिए कि कीमत खरीदार ने खुद लगाई। आमतौर पे किसी चीज की कीमत कौन सेट करता है, जो बेच रहा होता है। देखिए, ये सोने के पानी से लिखने वाले लफ्ज हैं, अगर आप इसको फोकस होकर सुन रहे हैं ना तो इसके बाद, आज के बाद आपको फैसला करना बहुत आसान होगा। जैसे जी रही हूँ ढीली ढाली जिंदगी में, वही ठीक है तो इट्स गुड, फिर छोड़ दीजिए इस हिस्से को, स्किप करके आगे चलिए। सिर्फ तर्जुमा आप इस शर्ट का सुनना चाहते हैं ना तो ये लेस देन 2 आवर्स का है। मैं आप सब साथियों को बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के पास 2 आवर 45 मिनट सुनने का वक्त नहीं है तो आप ये शुरू का 45 मिनट छोड़ दिया करें और सिर्फ आखिर वाला हिस्सा सुन ले, बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह उसमें भी। लेकिन ये शुरू का जो हिस्सा है ना, ये आपको साबुल जमीन से उठाकर साबिकूना लवलून में ले जाएगा। ये VIPs के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं जो इकोनॉमी में है। तो जब दुनिया में कोई चीज बिकती है तो उसकी खरीद कीमत लगाता है वो जो बेच रहा होता है, लेकिन यहां देखिए कि जो खरीदने वाला है वही इसकी कीमत भी लगा रहा है, और इतनी कीमत लगा दी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बिडिंग का नाम सुना है आपने? आप देखिए कि कभी कभी कोई बहुत ऊंची बिड दे देता है, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टेड होता है उस सौदे को लेने में कि कोई दूसरा उसकी बिड को क्रॉस ना करे। अल्लाह ने इसकी इतनी कीमत लगाई कि जन्नत जमीन और सात आसमान जिसकी पहनाइयां हैं, और इसमें ऐसी ऐसी नेमते हैं कि फला तालम नफ्सु मा खुफिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी ने उसका तसव्वुर ना किया। फिर अगली बात नोट कीजिएगा कि ये सौदा नकद नहीं, उधार हुआ है, यानी कीमत यहां दे रहे हो और चीज तुम्हें दूसरी जिंदगी में मिलेगी। वरना तो लोग जन्नत देखने एक आंख से तो भाग जाएं। हदीसें मौजूद हैं, इसका वक्त नहीं है इस वक्त, कि अगर जिब्राइल से पूछा गया कि अगर मेरी जन्नत देख ले बंदे तो क्या हाल हो, का कोई एक भी उससे बाहर ना रहे, और का अगर जहन्नुम देख लें का कोई एक भी उसमें ना जाए। तो अल्लाह ने कीमत इधर लेनी है, ये ऐसी है जैसे आप ऑर्डर करते हैं ना चीज, तो पहले आप बिस्टिलिंग देते हैं नॉर्वे की जुबान में, हाँ, पैसे दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड का देते, फिर वो कहते हैं अच्छा चले हम आपको डिलीवर करते हैं। तो ये सौदा नकद नहीं, उधार हो, कीमत आप यहां दे रहे हैं और आपको चीज वहां मिलेगी। फिर आप देखिए कि जान और माल को खरीद लेने के बावजूद भी फौरी पर नहीं लिया जा रहा, बल्कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की राह में दीन की सरबुलंदी और उसके कलमाए हक को बुलंद करने के लिए इनकी जब जरूरत हुई तुम खुद ही पेश कर देना। इस जुमले को जरा सा तबूक के सफर पे ले आइए। अल्लाह के नबी घरों से जाकर नहीं निकालते थे, फोन कॉले नहीं करते थे, मैसेज नहीं करते थे, वो तो खुद ले लेके फिरते थे। फिर मजे की बात देखिए कि यहां तक रियायत दे दी गई और कह दिया गया कि इन चीजों को तुम अपने ही तसर्रुफ में रखो, लेकिन इनका इस्तेमाल हमारी मर्जी के मुताबिक करना, क्योंकि तुम इनके अमीन हो, मालिक नहीं। क्या आपको ये 6 नुक्ते समझ आए हैं? क्या खूबसूरत सौदा है अल्लाह का आपके मेरे साथ। कभी आप चीज खरीद के कहते हैं चले अभी चाहिए नहीं, आप यूज करें, जब मौका हुआ ले लूंगा। तो बात यह है कि इंसान की कोई चीज अपनी नहीं है जो बेचे, और कोई चीज अल्लाह की मलकियत से खारिज भी नहीं है कि वो इसको खरीदे। इसलिए यहां सिरे से किसी खरीदो फरोख्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ रहे हैं ना? यानी चीज अपनी बेचते हैं तो जिसम माल तो अपना नहीं है हमारा, और चीज अल्लाह की मलकियत में ऑलरेडी है तो अल्लाह क्यों खरीद रहा है, ये मुराद है। तो फिर ये सारा सौदा क्यों हुआ, तो लिखिए, इसमें अल्लाह ने इंसान को इरादे और इख्तियार की आज़ादी दे रखी है कि इसको जो कुछ दिया है इसमें देखे कि यह अमीन की हैसियत से इसका इस्तेमाल करे या खाइन बनकर खुद साख्ता मालिक की हैसियत से तसरफ करता है। असल में ये जो बै है ना, आखिरी जुमले लिखिए, इससे मकसूद इम्तिहान है। पहली सूरत क्या है कि आप अल्लाह ताला से वफादारी करें और दूसरी सूरत यह है कि आप गद्दारी कर दें। एक मोमिन और काफिर का फर्क बस यही है, मोमिन अल्लाह ताला का वफादार होता है और काफिर बेवफा और बागी होता है। इस दुनिया में तो हमें जीने का हक तक नहीं था, अल्लाह ने तो हमें इतना कुछ दे दिया, तो जरूरत है इस बात की कि सब को सुनकर आइए खुद से एक सवाल करें, फिर मेरा उजर क्या है, मैं कैसे इन चीजों में अपने रब के पास हूँ। आप दुनिया में जब भी किसी के पास आते हैं, कोई चीज लेन देन करते हैं, इसकी मजीद कुछ चीजें आपको इंशाल्लाह आगे दूंगी जहां आप चलेंगे इस आयत के ऊपर तर्जमे के साथ। इसी थीम के साथ आज हमारी दुआ बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाहुम रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन वस्लिख ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, मैं तेरी ही रहमत की उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, मुझे लहसा भर भी मेरे नफ्स के सपुर्द न कर, मेरी मुकम्मल हालत दुरुस्त फरमा दे, तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। इसमें जो ये लफ्ज है ना, फला तकिलनी इला नफ्सी, इसको पकड़ लें, ये वकालत वाला लफ्ज है, तिकलान कहते हैं इसको अरबी में। वकील क्या करता है, आप वकील के वाले चीजें करके अपने आप को फारिग कर लेते हैं कि अब इसको क्या कहने, मैंने अब ये खुद ही जाने, मेरा इस मामले में अब कुछ नहीं, और आप दे दें वकील को चीजें और उसके बाद फिर खुद भी बीच में बोलते रहें तो फिर वकील चला जाएगा या जज रूठ जाएगा आपसे कि आप चुप करें, पहले डिसाइड करें कि बात किसने करनी है। आपका मेरा ये नफ्स, और असल में यकीन कीजिए ये नफ्स है जिसने आज तक मेरी जिंदगी के 30-35-40 साल जाया किए हैं। अगर मैं आज भी इधर से उधर लुढ़क रही हूँ ना, इतने साल से ये कुरान की दावत मेरे दिल पे पड़ रही है और अभी भी मेरी जिंदगी में ये भाग दौड़ नहीं है ना, और अभी भी जिहाद फी सबीलिल्लाह की ये किस्म कि अल्लाह का नाम दुनिया में आम हो जाए और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ दूं, अगर अभी तक ये नहीं है तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। किसी ने देखी नहीं, चखी नहीं, उसको क्या पता, वो तो बेचारा नमाज भी नहीं पढ़ता। तो ये आप मेरे लिए जो 10 से 20 से 25 जितने साल आपकी जिंदगी में हो गए इस कुरान के नाते से, कि वाकई अभी तक नहीं समझ आया तुम्हें कि तुम्हारे जिस्म की ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, तो अल्लाह तुम मेरे नफ्स को, मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। दूसरे लफ्जों में यहां जुमला लिख लें कि अल्लाह मेरे नफ्स को मेरा वकील ना बना देना। फला तकिलनी, पलक झपकने के बराबर, ब्लिंक ऑफ आई, क्योंकि नफ्स कौन है, ये आग आप 13वें पारे में पढ़ेंगे पहली ही आयत में कि वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सुई। तो तुकलान एतमाद और भरोसे को कहते हैं, वकीला युकिलु तौकीलुन वकील बनाना, बहादुर जिस पर भरोसा किया जा सके। अरबी जुबान में इसके मुख्तलिफ माहज हैं, मुख्तलिफ मानों में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, किसी को अपनी कामयाबी का जिम्मेदार बनाना और इसी तरह से अपने हर मामले में किसी के ऊपर ट्रस्ट करना। तो बातें तो बहुत सारी और भी हो सकती हैं, लेकिन इस दुआ को मांगकर आज हम आगे चलेंगे कि मेरे मालिक मेरी तौबा के और मेरे बीच में जो रुकावटें उसको दूर कर दे। तौबा कीजिए, 10 पारे बहुत होते हैं, आपको भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया कि आपका रब आपसे क्या चाहता है और मैं मेरे से क्या चाहता है। आज बोलिए कि अल्लाह पिछली जिंदगी को तलाक, पिछली जिंदगी को सी ऑफ, पिछली सुस्तियां खत्म, पिछली नाफरमानियां खत्म, पिछला ढीलापन खत्म, पिछली जिंदगी के कच्चे पक्के काम खत्म, नमाजें छोड़ी अल्लाह माफ कर दे आइंदा पक्की, पिछले रोजे रख लूंगी इंशाल्लाह, तू मुझे आगे ले चल और एक दर्जा आगे ले चल। हदीस में आता है कि जिसको अल्लाह ताला ने एक, मतलब जिस तरह आप कह सकते हैं कि जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं हुआ तो वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं और आज की हदीस पे चलते हैं। तिर्मिजी की रिवायत है 3540, अनस बिन मालिक इसके रावी हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह कहता है, यानी हदीस कुदसी है ये, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूंगा। सोचिए, हिदायत भरा दिल लाइए, तौबा की तड़प पैदा हो जानी चाहिए 10-12 पढ़ने के बाद, क्योंकि एक वक्त होता है हमारी ग्रोथ का, उसके बाद तो फिर कोई ना कोई उसका रिजल्ट सामने दिखना चाहिए। जितना ज्यादा आप इस चीज के ऊपर अपने आप को माइल करते जाएंगे, आपका दिल आपको बताने लगेगा कि आप हकीकत में इस चीज के ऊपर कितना ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो फरमाया कि इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे अपनी उम्मीदें और तौक्कात वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूंगा और तुझे बख्शता रहूंगा चाहे तेरे गुनाह किसी भी दर्जे पर पहुंचे हुए हों। मुझे किसी बात की परवाह और डर नहीं। ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूने लगे फिर तुम मुझसे मगफरत तलब करने लगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे किसी बात की परवाह न होगी। ए आदम के बेटे, अगर तू जमीन भर भी गुनाह कर बैठे फिर मुझसे तू मगफरत तलब करने के लिए मिले, लेकिन मेरे साथ किसी तरह का शिर्क ना किया हो तो मैं तेरे पास इसके बराबर मगफरत लेकर आऊंगा और तुझे बख्श दूंगा। है कोई दुनिया में इतना मेहरबान आपके ऊपर? तो दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु अव्वलहु व आखिरहु। तड़प के, रो के, आजजी के साथ अपने आप को अल्लाह के आगे बिखेरते हुए, बिछाते हुए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी पिछली जिंदगी के गुनाह माफ कर दे। फिर आप देखिए कि समंदर के झाग देखिए कितने हैं और जमीन और आसमान में कितने गुनाह आ सकते हैं। हम छोटे हैं ना, हम थोड़े से गुनाहों पर डर जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ो आप और कर लो, माफ तो होने नहीं। तो नहीं, आपका रब हर गुनाह आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा माफ करने पे कादिर है और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे चलेंगे पारा 11 में मौजूद अनवाउल कुलूब पे, सूरह तौबा 127 में जो पारा है, जो दिल है वो है अलकल्बुल मसरूफ व निल हकी, हक से फिरा हुआ दिल। सरफ अल्लाह कुलूबहुम बिअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये ना समझ लोग हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को फेरने से बचा दे। और इसके बाद यूनुस 74, अलकल्बुल मतबू अलई, वो दिल जिसके ऊपर मोहर लग चुकी है। कज़ालिक नत्ब उला कुलूबिल मोतदीन, हम इसी तरह हद से गुजरने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। फिर यूनुस 84, अलकल्बुल मोमिन, वकाल मूसा या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि लोगो, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इस पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। आयत नंबर 88 सूरत यूनुस, अलकल्बुल मतबू अलई, ये भी देखिए दो दिलों की बात है सेम कैफियत की। रब्बन अतमिस अला अमवालिहिम वश्तुद अला कुलूबिहिम फला यूमिनु हत्ता यरवुल अजाबल अलीम, ऐ रब इनके माल गारत कर दे और इनके दिलों पर ऐसी मोहर कर दे कि ईमान न लाएं जब तक के दर्दनाक अज़ाब न देख लें। अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम बुरे दिलों से बचा ले। और फिर आगे यूनुस 98, अलकल्बुल मोमिन, लम्मा आमनु कशफ नान हम अजाब अल खिज़्य फिल हयात दुनिया व मत्ताना हम इलाहीन, वो कौम, इशारा है कौम यूनुस की तरफ, शायद इसी पे सूरत का नाम सूरत यूनुस है, जब ईमान ले आई तो अलबत्ता हमने इस पर से दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब टाल दिया और इसको एक मुद्दत तक जिंदगी से बहरामंद होने का मौका दे दिया था। आगे चलते हैं पारे में मौजूद हिदायत से मुतल्लिकात जो आयात हैं आपके सामने हैं, देखिएगा कि कैसे अल्लाह ताला खूबसूरत तरीके से हमें हिदायत की तरफ माइल करते हैं। सूरत तौबा की आयत 109 में क्या पता चलता है, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। फिर सूरत यूनस आयत 9 से पता चलता है, यहदीहिम रब्बुहुम बि ईमानिहिम। और आयत 25 यूनस, यहदी मन यशा। और 35 अल्लाह यहदी लिल हक। और 57 खूबसूरत आयत है कुरान के तारुफ की, अजमत कुरान की आयत, वहुदं व रहमतुल लिल मुमिनीन। और आयत 43 यूनुस, अफ अंत तहदिल उमया, क्या आप उनको राह दिखाना चाहते हैं जो खुद ही अंधे बने हुए। अल्लाह ताला हमें हिदायत के इतने तस्करों के बाद हिदायत दे दे। और इस बारे में आप पढ़ेंगे आखिर में ये आयत कि क्या खूबसूरत स्ट्रेटेजी है हिदायत को प्रेजेंट करने की। फिर आगे देखते हैं कि आज हम इस बारे में जो टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा उसका भी तारुफ ले लीजिए। اور یہ چیزیں آپ کا انڈیکس آف قرآن بنائیں گی انشاءاللہ. سورۃ توبہ شروع ہو چکی ہے پچھلے پارے میں, یہاں اس کی آیت نمبر 94 سے ہم شروع کریں گے اور سورۃ کے اینڈ 129 تک دیکھیں گے. اس سب کا ایک کوڈ ورڈ بنا لیجئے, نیکی کا موقع ہر وقت نہیں رہتا یا بار بار نیکیوں کے مواقع نہیں ملتے. اس ٹیکسٹ کے اندر دیکھیے تو جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, مختلف آیات کے مختلف تھیم. عذر بہانے کرنے والوں کا ذکر شروع میں پڑھیں گے, جن کو اللہ نے دنیا میں نعمتیں کم دیں, جیسے دیہاتی اور غریب غربا جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں, تو پھر ان کا حساب بھی کم ہوگا. تو اصل حساب تو پھر ہمارا ہونا ہے جن کے پاس نعمتوں کی کثرت ہے. پھر اسی میں آپ کے وہ خوبصورت آیت آنے والی ہے جس میں السابقون الاولون بننے والوں کی بات ہے, اور اسی میں اعمال کے اعتبار سے ان درمیانے درجے کے لوگ میڈیوکرز کا ذکر ہے. خلط و عملا صالحا واخر سیئا, اچھے برے کام کرتے ہیں, یعنی اچھے کام بھی شروع ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک برے کام چھوڑے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں, یہ انٹرفیس آتا ہے, وقت کے ساتھ دور ہو جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. مسجد درار کا ذکر ہے جو اصل میں ایک گھات تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف, لیکن اوپر لیبل دین کا لگا ہوا تھا. اللہ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. پھر ہر نیکی کا کام نیکی نہیں ہوتا, یعنی گڈ ڈیڈز اور رائٹیس ڈیڈ کا فرق دیکھیں گے ہم اس میں. اور پھر ایمان والوں کے نفس کا سودا, آپ کی آیت 111 جو آپ دیکھ چکے ہیں تھوڑی بہت. پھر اسی طرح جنت کی قیمت کی وہ مختلف کیفیات کا ذکر ہے جس کا نقطۂ آغاز توبہ سے ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ نے توبہ کر لی ہے نا, پچھلے گناہوں پہ شرمندگی آ گئی ہے, تو ماشاءاللہ پہلی پیمنٹ چلی گئی, انسٹالمنٹ میں ملے گی یہ جنت انشاءاللہ. پھر عبادات اور اللہ کی حدود کی حفاظت, کہ ہم دیکھیں گے کہ آج ایک گلاس ٹوٹ جائے تو ہم دکھی, ہمارے سمارٹ فون کی سکرین ٹوٹ جائے تو ہم دکھی, لیکن آج قدم قدم پہ اللہ کے دین کی حدیں ٹوٹتی دکھتی ہیں تو ہمارے ماتھوں پہ بل نہیں آتا, شکن نہیں آتی. اور یہ کہاں ٹوٹتی ہیں حدیں, یہ ہمارے گھروں میں ٹوٹ رہی, یہ ہمارے پہننے اوڑھنے میں ٹوٹتی, یہ ہماری تجارتوں میں, ہماری معیشت اور معاشرت میں ٹوٹ رہی, ہمارے پہناووں میں ٹوٹ رہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حدوں کی حفاظت کی توفیق دے. پھر بتایا جائے گا کہ صرف نسبت کافی نہیں ہے, عمل کرنا پڑے گا. باس پرس کس کی ہوگی اس کا تذکرہ ہے. اور پھر سستی کی کباختیں, تین لوگوں کا قصہ جو محض سستی کی وجہ سے تبوک میں ہم سفر نہ بن سکے, لیکن اللہ نے 50 دن کے اتنے زبردست ٹرائل کے بعد ان کو پاک کر دیا. پھر صحابہ کرام کی نفس سلم سے محبت دیکھیں گے, کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کسی تکلیف میں ہو اور ہم گھروں میں آرام سے مزے سے بیٹھے ہوں. ہر علاقے سے کچھ لوگ دین کے لیے نکلیں, یہ بہت پیاری ہمیں ادھر ایک انشاءاللہ فیلنگ ملنے والی ہیں. اور پھر منافقوں کے تذکرے, اور آخر میں دیکھیں گے غموں سے بے نیاز کرنے والی ایک دعا بھی آج ہم پڑھنے والے ہیں. سورۃ توبہ ترتیب کے اعتبار سے 9th نمبر کی سورۃ جو ہمارے سامنے ہے, طویل سورتوں میں سے خوبصورت سورۃ, اور 94 سے 129 ہمارے آج کے حصے میں. آئیے شروع کرتے ہیں ٹیکسٹ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 94 سے 97 کا ٹاپک لکھ لیجئے, عذر بہانے کرنے والے. یا تزرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے نہیں کہ رستے میں یہ آیات اتر گئیں کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے, اب ظاہرہ سامنا تو ہونا ہے, اور جب بھی سامنا ہونا ہوتا ہے تو بندہ اس سے پہلے ہی کچھ عذر شروع کر دیتا جمع کرنے تاکہ مزید شرمندگی سے بچ سکوں. تو انہی کے تذکرہ ہے, یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس آؤ گے, جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو, ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے, اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے. پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے, پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. نیکی کا موقع جب زندگی میں آئے لبیک کہہ دیجئے, اللہ عذر دور کر دے گا. دیکھیے جم, ہم جن چیزوں کی وجہ سے कमिट नहीं करते या ओके नहीं करते, असल में उन हालात ने बदलना ही हमारी कमिटमेंट के बाद होता, और हम सारी जिंदगी इसी खौफ का शिकार रहकर बड़ी बड़ी नेकियों को जाया करने का जरिया बन जाते और बिल्कुल अपने आप को महरूम कर लेते। कल जिंदगी से जब गुजरेंगे तब हमें एहसास होगा कि हमने क्या क्या खोया, और जन्नत में जाकर और किसी चीज पे हसरत नहीं होगी इसके सिवा कि जो घड़ियां अल्लाह की याद अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गईं। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो, वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और इनका ठिकाना दोजख है इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ये इसलिए कस्में खाएंगे कि तुम इनसे राजी हो जाओ, ठीक है? सो अगर तुम इनसे राजी हो भी जाओ तो अल्लाह तो ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। देहाती लोग कुफर और निफाक में बहुत ही सख्त हैं। इनको ऐसा होना ही चाहिए कि इनको इन अहकाम का इल्म ना हुआ जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं, और अल्लाह ताला बड़े इल्म और बड़ी हिकमत वाला है। बस लोग नेकी के मौके पे तो पीछे होते हैं लेकिन उजर करते हुए सामने आते हैं, और जो मेन फ्रंट पे शख्स होता है उसको खुश करना चाहते हैं कि असल मेरा ये था वो था, बस आप मुझसे खुश भी हो जाएं। देखिए, कभी भी कोई बंदा आपके सामने उजर पेश करे तो हदीस को सामने रख लीजिए कि लोगों के जाहिर पे कयास कीजिए। अल्लाह के नबी ऐसे ही करते थे। आप आकर बैठे मस्जिद में तो शुरू हो गए आने वाले लोग, बस अल्लाह के नबी क्या बताएं क्या करें। अल्लाह के नबी को पता भी था कि झूठे हैं, लेकिन आप कहते हैं चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर कोई हुआ तो कर लीजिएगा। यही किया करें, मत कुरे दिए मत बाल की खाल करिए, दुआ दे दिया करें कि अल्लाह ताला आइंदा आपको महरूम लोगों में न करे। फिर आगे आयत 98 से 99, जो पीछे भी एक आयत से शुरू हो चुका, अरबियों का किस्सा है। लिखिए, कम नेमत वालों का हिसाब भी कम होगा। अरबों में कुछ लोग तो शहरों में रहते थे जैसे हर मुल्क में रहते हैं, मदीना में थे, लेकिन कुछ मजाफाते मदीना जिसको इंग्लिश में सबर्ब्स कह सकते हैं, मुल्हिका इलाके होते हैं, जैसे डिफेंस है तो उसके साथ आपको कच्ची बस्ती दिखेगी या डिफेंस के कोई भी मुख्तिस खर्च बड़ी बस्ती के साथ एक छोटी बस्ती होती है। तो इनके पास बहुत नेमतें नहीं होती, सीधे साधे लोग हैं, ढोर डंगरों में रहते हैं, तो इनमें निफाक बहुत था। आज भी आप देखिए कि एक तो फैशन फैलाने वाली औरत बेपर्द है ना, जो अपने आप को खोल के फिरती है, और एक घरों में मासी भी बेपर्द है बेचारी, काम करते हुए भी उसको अपने कपड़ों की होश नहीं होती। तो नेमते कम तो हिसाब भी कम। वमिन अल आराबी मन यत्तखिज़ु मा युन्फिकु मगरमा, और इन देहातियों में से बाज़ ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं, और तो मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजिर रहते हैं। बुरा वक्त इन पर आ ही पड़ा है, और अल्लाह तआला सुनने वाला जानने वाला है। नोट कीजिएगा, कुछ लोगों को अल्लाह के रास्ते में कुछ भी और किसी भी सूरत में खर्च करना एक जुर्माना ही लगता है। मगरमा का जो लफ्ज इधर आया है, तो याद रखिए कि माल पानी की तरह होता है, बहता पानी पाक है, खड़ा पानी जोहड़ है, बू आएगी सड़ांध होगी। फिक का भी यही इश्यू है कि बहते पानी से वजू कर लीजिए वजू हो जाएगा, लेकिन खड़ा पानी एक खास क्वांटिटी से कम हो तो वो पाक नहीं होता। माल को खर्च करना, अल्लाह के रस्ते में कोई खर्च हो जाना और उसको जुर्माना समझना, बिल्कुल अपने आप को कह लीजिए कि एक दरिया और एक बड़ी खूबसूरत नदी नाले से हटाकर एक जौहड़ में बदलना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तू हमारे दिलों से माल की मोहब्बत को निकाल दे और ऐसे लोगों में न शामिल कर के जो अपनी जात पे खर्च करने पे आए तो लाखों करोड़ों, और जब अल्लाह के रस्ते के कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट का भी पता चले ना, तो फिर चंद छोड़े से नोट कि चलें कुछ मेरा भी हिस्सा डाल दें, बल्कि अल्लाह ताला में साबिकून अल अव्वलून वाले हिस्से डालने वाला बना दे। आगे देखिए, और बाज अहले देहात ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं और ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं इसको इंदल्लाह यानी अल्लाह के करीब क़ुर्ब हासिल करने का जरिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का जरिया बनाते हैं। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मूजिबे क़ुर्बत है, इनको अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत वाला बड़ी रहमत वाला है। इससे क्या पता चलता है कि जब भी कोई अल्लाह के रास्ते में माल दे या कुछ एफर्ट करे, स्किल्स दे, वर्क दे, तो उसको दुआ देनी चाहिए। बस लोग बड़े बखील होते हैं, कठोर होते हैं, वो कहते हैं हम क्यों दें, हाँ दुआएं देंगे सर पे चढ़ जाएंगे, दुआएं क्या तारीफें। अक्सर लोग लिखे एक जुमला अपने लिए, کیونکہ یہ پارہ ہے ہی سابقون الاولون والوں کا. آپ کو اللہ کے رستے کے کام کرنے ہیں, آپ انصار اللہ سے بڑھتے ہوئے ذمہ داران اور پھر اس سے بھی مزید کور ٹیم میں چلے اگر گئے تو آپ کو اپنی ٹیم کے لوگوں کو, آپ کے ساتھ جو ساتھی کام کرتے ہیں, آپ کے ماشاءاللہ بڑے بڑے گروہ ہیں, ان کو دعائیں دینا سیکھیں. لوگ کیا سوچتے ہیں ہماری تعریف ہو, اللہ کہتا ہے دعا دو. اور میں نے اپنے لیے یہی اصول رکھا ہوا ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا, تعریف سے زیادہ میرے منہ سے دعا نکلتی ہے, کیونکہ تعریف سے عجب آئے گا. آپ کہتے ہیں موٹیویشن آتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اپنے اندر سے نہیں اٹھے گی اس کو آخر میں ایک وقت آئے گا تعریف بھی اچھی نہیں لگے گی. تو دعائیں دیجئے, اور اللہ کے نبی دعا دیا کرتے تھے. آگے دیکھیے آیت 100 جو خوبصورت آیت, یہ ہے اصل میں وہ آیت جس پہ اب آپ کو کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اپنی ہدایت کی طلب میں. اب نیکسٹ فیز پہ آپ کو اس میں چڑھنا ہے, اور وہ کیسے؟ السابقون الاولون بننا ہے. کیسے؟ ہم کہتے ہیں وہ تو بن گئے پچھلے دور کے لوگ, تو وہ تو اپنے دور کے سابقون الاولون تھے جس کا تذکرہ ادھر تھا. آپ کو مجھے آج کے اس دور کے سابقون الاولون بننا ہے. کیسے؟ ترجمے کو دیکھتے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں, اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر دیے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. السابقون الاولون, اور انجام دیکھ لیجئے, رضی اللہ عنہم ورضوان, یہ ہے آپ کا میرا گول. زندگی میں ہر انسان کے پاس ایک ہی جتنا وقت ہے, ٹھیک ہے, سکلز اور نعمتیں کم و بیش ہو سکتی ہیں, عمر کا فرق ہے, لیکن جب بھی نیکی کا موقع آتا ہے تو ہمارے پاس یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو لبیک کہنے والے لوگ بھی دو ہی طرح کے تھے. کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پکار پہ ہاتھ رکھے. بس آپ دیکھیں, آپ کے سامنے ایک فلو چارٹ ہے کہ بس السابقون الاولون کے لیے بشارتیں ہیں کیا, رضی اللہ عنہم ورضوان, دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل, سب سے بڑا ایوارڈ, پرائیڈ آف پرفارمنس کیا کرے گا, گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام گیا تو کیا ہو جائے گا, پوری دنیا آپ کو جاننے لگ گئی, آپ فیمس ہو گئے تو کیا ہوگا, لیکن رضی اللہ عنہم ورضوان یہ وہ ٹائٹل ہے جس کو پانے کے لیے کوشش کریں, کہ جس کو قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, بس اس میں محنت کرنی چاہیے, اس کی رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو. غزوہ بدر بالکل نئی جنگ تھی, ابھی کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا ہوگا, لوگوں نے ایزی لیا, لیکن 313 نے فوراً کا لبیک اللہم لبیک. نہ اس وقت یہ پتا تھا کہ اس کے بعد اصحاب البدر کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ آسمان سے جھانک کے کہہ دے گا کہ آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرو تو تم جنتی ہو. پہلے نہیں پتا ہوتا آپ کو کیا ملنے والا ہے, لیکن بس بلا سوچے لبیک کہہ دیجئے. انہوں نے لبیک کہا, بعد میں لوگوں کو پتا چلا, ہو ان کے تو اتنے درجے یوم الفرقان پہ آ گئے اور یہ ہوا, آپ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر کوئی موقع آئے. کہا, اچھا وہ تو اب پھر آئے گا تو آئے گا. تو کیا پتا چلا, نیکی کی پہلی پکار پہ لبیک, پہلا نافام آپ کا, پہلی پکار آپ کی, پہلا ہر جگہ آپ کا نام, کوئی کام کرنا ہے میں حاضر, یہ چیز چاہیے میں حاضر, یہاں وقت چاہیے میں حاضر, یہاں چابی لے کے جانی ہے میں حاضر. اور پھر یہ لوگ کمال حسن و خوبی تک اینڈ تک اس کام کو انجام دیتے رہے. لکھیے دو لفظ, آپ عربی پہ نظر ڈالیں نا تو السابقون اور الاولون, پہلوں میں بھی پہلے کون ہوتے ہیں, جو لبیک بھی سب سے پہلے کہتے ہیں, سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں بلڈنگ میں اور سب سے آخر میں نکلتے ہیں, اور ہر کام کو آخر تک تکمیل کے انجام پہ پہنچا کے جاتے ہیں. پھر ہے رضی اللہ عنہم ورضوان, آپ شروع میں جلدی ہیں تو اینڈ پہ نہیں ہیں. آپ نے لبیک تو کہہ دیا, اچھے طریقے سے کام شروع کیا, بعد میں وہ کورس ایسا لڑکتا پڑکتا چلا گیا کہ اللہ کی رحمت سے کیا کسی یتیم اور مسکین بچے کے ساتھ معاملہ ہو, تو سابقون الاولون نہیں ہے. تو لکھیے اس سب کے لیے جن کو ذمہ داریاں ملتی ہیں, مجھے بھی ایک ذمہ داری ملی ہے, پارے کے شروع سے لے کے آخر تک میرا جوش, میرا شوق اور میرا انتھوسیزم ایک ہی ہونا چاہیے, وہی لوگ جائیں گے آگے. अग्गा दौड़ते पिछा चौड़, ये भी नहीं है साबिक अवलून। और सुस्ती के मारे अच्छा पहले तुम कर लो ना, अच्छा सारे कर ले, देखते हैं सब हिस्सा डाले फिर एंड पे मैं करूंगा, नहीं बनेंगे। अबू बकर सिद्दीक का नाम क्यों है? क्योंकि हर जगह पहले वो होते थे और एंड तक वही थे, और आज देखिए कि जिस्म के तौर पर भी वहां मौजूद हैं। अल्लाह ताला में साबिकून अल अव्वलून में शामिल कर दे। और ये वो वक्त होता है जिस वक्त हम उजर बहानों में खोए होते हैं, असल में वो वक्त होता है जिस वक्त हमें अल्लाह ताला कोई मुकाम देना चाहता है, लेकिन कई भी कभी लोग सुस्ती की वजह से नहीं करते। नोट कीजिए कि कौन बंदा जल्दी से लब्बाई कह देगा जो पहले से तैयार होगा। खिलाड़ियों को देखा करें कैसे खड़े होते हैं पहले से रेस के लिए और एकदम 1 2 3 के बाद भाग पड़ते हैं, उस वक्त जाकर कपड़े चेंज करेंगे। तो जिन्होंने पहले से तैयारियां की होती हैं, जो पहले से इस चीज की हिरस रख रहे होते हैं ना, वो इस काम के ऊपर लब्बैक कहते हैं। अभी से प्लान कीजिए, इरादे कीजिए, हमने कहां किधर क्या काम करना है और हमने उस पर लब्बैक कहना है। आगे देखिए आयत 101 से 103, वमिमन हौलकुमिनल आराबी मुनाफिकून, ये हैं मिले जुले अमल करने वाले। इसको सुनते वक्त आपने अपने ऊपर नजर रखनी है, खास तौर पे अगर आप तकरीबन 2-3 दफा कुरान पाक के किसी भी दौर से गुजर चुके हैं और कुछ तुम्हारे गिर्दो पेश हैं और कुछ तुम्हारे गिर्दो पेश वालों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिकीन हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं, आप इनको नहीं जानते और हम इनको जानते हैं, हम इनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो बहुत बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। और कुछ और लोग भी हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ भले और कुछ बुरे। अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाए, बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला बड़ी रहमत वाला। एक सहाबी को फिक्र लग गई थी अपनी, एक नेक शख्स थे, तारीख के कोई भी होंगे, नाम लिखे बगैर बस सुन लीजिए, कहने लगे कि कुरान कहता है फीही जिक्रुकुम, आगे हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह 17वें पारे में, कि कुरान में तुम्हारा अपना जिक्र है, सूरत अल अंबिया में आता है। तो ढूंढने लग गए कुरान पढ़ते हुए मेरा किधर जिक्र है। जब बहुत साबिकून अल अव्वलून की बात पड़ी, कहने लगा ये तो मैं नहीं हूं, मेरे अंदर अभी इतनी चुस्ती नहीं है कि मैं फौरन लब्बैक कहूं। फिर मुनकरीन और काफिरों की आयतें पड़ी जिसमें जहन्नमी होने की बात थी, कहा अल्लाह का शुक्र है मैं इनमें भी नहीं हूं, ऐ अल्लाह मैं किधर हूं मुझे दिखा दे। जब इस आयत पे आए ना, खलतु अमलन सालेहन, इन्होंने अच्छे और बुरे अमल मिला जुला दिए हैं। कैसे? खलत अमलन सालिखन व आखर सईयन, कहने लगे अल्लाह मैंने खुद को पा लिया। देखा जाए तो आज उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत इधर है। आइए वापस अपने मौजूदा हालात में, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलखा और इसी तरह से बाद वाले देख लोगों वाले भी बहुत थोड़े मिलेंगे आपको। ये तो थोड़ों में भी थोड़े हैं, आज भी थोड़े हैं, 2 बिलियन में शायद 2000 भी ना हो, और अल्लाह को पता है कितने है। बहुत बदतर भी नहीं है अब्दुल्ला बिन उबई जैसे कलमा को, लेकिन अक्सरियत ऐसी है। कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, नमाजें तो पढ़ते हैं ना, अब रोजे भी तो रख लिए हैं, एक उमरा करेंगे सारे गुनाह माफ होंगे। तो अल्लाह ने यहां देखिए क्या लिखा है, कुरान को खोल कर देख लीजिए, उम्मीद दिलाई है बस, यकीन नहीं है, यानी असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह तौबा कबूल करे, तो वादा तो नहीं है, तो अपने आप को एक स्टेप आगे लाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इट्स ओके गुड, लेकिन अगर आप बार बार सुन चुके हैं तब खलत अमलन सालेहन से आगे उठकर असाबिकून अल अव्वलून में शामिल होइए। फिर फरमाया आप इनके मालों में से सदका लीजिए जिसके जरिए से आप इनको पाक साफ कर दें, और इनके लिए दुआ दी कीजिए, बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मूजिब इत्मीनान है और अल्लाह ताला खूब सुनता जानता है। क्या पता चला कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदका देते थे, अल्लाह इसके जरिए उनका दिल पाक करता था। लिखिए, आपके दिल में अगर माल की मोहब्बत है ना, तो ये कोलेस्ट्रोल है, किसी वक्त भी दिल का दौरा पड़ सकता है, या आपकी गटर में फंसा हुआ वो मादा है जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जा रहा। देना शुरू करें। दिल कभी छोटा होता है, किसी को देना है ढूंढ के छोटा सा सेब निकालेंगे, चलो ये दे दो, और वो भी जिसको दाग लगा हो, चलो फेंकना ही इनको दे दो। किसी को देना है तो पुराना नोट देंगे। आज इस बात की भी दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे दिल से माल की मोहब्बत चली जाए। दिल में नहीं रखना माल को, हाथों में रखिए, आपके काम आए या किसी और के काम आए, और बाकी तो सारा अल्लाह का है। जमा जमा के रख रख के दथियों की दथियां और नोटों के नोट, और वो दस दस बीस बीस साल से जेवरात जिनको हवा ना लगी लॉकर्स में रखे, और उल्टा कहते हैं ज़कात खा गई उनको और ज़कात दी, पहनते तो नहीं, तो क्यों रखा हुआ है? बच्चों के लिए उन्होंने कहा पहनना, वो तो अभी ना पहने आपके सामने। तो लिहाजा दिल से माल की हुप निकालने के लिए दुआओं की जरूरत होती है इंसान को। आयत 104 से 106 में अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हैं। अलम यालम अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबा, क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वो ही सदकात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ताला ही तौबा कबूल करने में कामिल और बहुत रहीम है। मुझे याद आ रहा कि पिछले साल या पिछले सालों में किसी साल में हमने ये पारा तौबा पे किया था, और पूरे पारे में आप देख रहे हैं हर दूसरी आयत में तौबा की बात है, और सूरह तौबा यही है असल में। तो अल्लाह ताला हमारी तौबा भी कबूल करे और हमारे दिए हुए सदकात और खैरात को भी कबूल फरमाए। और कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल खुद अल्लाह देख लेगा और इसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे, और जरूर तुमको इसी के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीजों का जानने वाला है, सो वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। और कुछ और लोग भी हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म तक मुलतवी है, इनको सजा देगा या इनकी तौबा कबूल करेगा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला बड़ा हिकमत वाला है। यहाँ आप देख रहे हैं कि तौबा के एतबार से मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे, और सबीलुल जन्ना के नोट्स में बल्कि खुद भी देख रही थी कि उसमें हमने कितनी डिटेल से यहाँ तीन मुख्तलिफ गिरोहों को पढ़ा हुआ है, आखरून, मुरजून और इसी तरह से तायबून, के बहुत सारे लोग जो हैं वो तौबा करने में देर कर रहे होते हैं, कुछ जल्दी करते हैं। असल में गज़वा तबूक क्या थी? एक फिल्ट्रेशन था। अल्लाह फिल्टर लगा देता है हक के नाम पर, जहां हक के नाम पर कोई प्रैक्टिकल चीज सामने आएगी वहां आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ जरूर पेशबंदियां सामने आ जाएंगी। तो ये कुछ लोग अबू लुबाबा की तरफ इशारा, और उनके गिरोह के कुछ लोग थे, नहीं जा सके। बाद में अल्लाह के नबी से कुछ कहने की बजाय खुद को पिलर से बांध दिया। आज भी अगर अल्लाह आपको लेकर जाए मस्जिद नबी में, तो सतून अबी लुबाबा बिल्कुल रियाजुल जन्ना के पास है, कहने लगे मैं तो नहीं खुद को खोलूंगा जब तक अल्लाह के नबी अपने हाथ से ना खोलें। अल्लाह के नबी ने कहा जब आपने अपना मामला अल्लाह की अदालत में डाल दिया तो फिर मैं क्या करूं? तो अल्लाह ने फिर उनकी तौबा इस तरह से कबूल की। मैं देखती हूं कि अल्लाह ने लाड कितने देखे हैं सहाबा के, जो प्यारे होते हैं ना, जो काम अच्छा करते हैं, वो गलत करके भी हंसते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे भी किए होते हैं। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक प्यारा कीजिए। आगे आयत 107 से 110 तक एक साजिश है, एक ऐसी तहरीक जो इस्लाम के नाम पे थी, एक ऐसा काम जो देखने में नेकी का था लेकिन असल में वो क्या था? वो मस्जिद दरार थी। आइए पढ़ते हैं और इस पे बात करेंगे। वल्लज़ी नत्तखज़ू मस्जिदन दिरारा, और बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने इन अग़राज़ के लिए मस्जिद बनाई के ज़रर पहुंचाएं और कुफर की बातें और ईमानदारों में तफरीक डाल दें, और इस शख्स के क़याम का सामान करें जो इससे पहले अल्लाह और रसूल का मुखालिफ है, और कस्में खाएंगे कि सिवाय एक भलाई के और हमारी कोई नीयत नहीं, और अल्लाह गवाह है कि ये बिल्कुल झूठे हैं। आप इस मस्जिद में कभी खड़े ना हों, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है वो इसकी ज्यादा लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे आदमी हैं कि वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं, अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है। फिर क्या ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो, या वो शख्स के जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही को हो रखी हो, फिर वो इसको लेकर आतिशे दोजख में गिर जाए या आतिशे दोजख में गिर पड़े, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को समझ देता भी नहीं, यानी ला यफ़क़हून वाली कैटेगरी है इनकी। इनकी इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिल में शक की बुनियाद पर कांटा बनकर खटकती रहेगी। हाँ मगर ये कि इनके दिल ही पाश पाश हो जाएं तो खैर, और अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ये चंद आयात आपको थोड़ा सा अंदाजा तो दे गई। मदीना में अल्लाह के नबी सल्लम ने आने के बाद पहले अपना घर नहीं बनाया, अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद नबी, वो जगह जहां आपकी ऊंटनी बैठकर उठी थी दो यतीम बच्चों की थी, आपने कीमतन वो जगह खरीदी और उस जगह पे मस्जिद नबी की बुनियाद रखी। इससे पहले आप कुबा में जब तक चंद दिन रहे, वहां भी मस्जिद कुबा की बुनियाद डाल के आ चुके थे। ये दो मस्जिद बिल्कुल काफी थी मदीना और उसके मुजाफात यानी उसकी सराउंडिंग्स की जरूरियात को पूरा करने की। लेकिन एक शख्स जिसका नाम है अबू आमिर खजरजी, जिसको इस्लाम ने फिर अबू आमिर फासिक का नाम दिया। ये शख्स कौन था, जरा सी चंद चीजें लिखी आपके लिए नहीं होंगी शायद। देखिए दो नाम आप आज याद कर लीजिए, मदीना में अल्लाह के नबी सल्लम के मुकाबले पे जो दो शख्सियात थी ना, जिसको आप अपोजिशन कह दें आज के दौर में, कि जिनको अल्लाह के नबी का मदीना में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लोगों को भी ये फील कराया कि ये हमारे मुकाबले पे आ गए और हमारी इतनी अच्छी तंजीम बनी हुई थी और हम तो इतना अच्छा दीन का काम कर रहे थे, देखो ये आकर रंग में भंग डालने लगे। एक अब्दुल्ला बिन उबई, जिसकी रस्में बिस्मिल्ला की और रस्में ताजपोशी की तैयारियां थी, लोगों ने मान लिया था कि इसी को लीडर बना लेते हैं, लेकिन जब नबी सल्लम आ गए तो लोगों की तवज्जो इसकी बजाय आप पे आ गई। दूसरा शख्स था अबू आमिर खुजाई, और आप हैरान होंगे कि अबू आमिर खुजाई जो है ये अब्दुल्ला बिन उबई का बहनोई था। देखिये पांच दफा एक ग्रुप होता है छोटा सा, उसी के अंदर से शर निकलना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि अबू आमिर कौन था, वो खंजला जिसने अपने बीवी को छोड़कर बगैर गुसल किए मैदान जंग में गए और शहीद हो गए और बाद में गसीलुल मलाइका ठहराए, उसका बाप था ये। यानी अल्लाह ने कैसे इनको तोड़ा, यानी दो बड़े किरदार हैं, दोहराती हूं ताकि आप लिखना चाहें तो सही लिखे। दो बड़े दुश्मन थे अल्लाह के नबी के, अबू आमिर फासिक खजरजी और एक अब्दुल्ला बिन उबई। आप कह लीजिए कि अब्दुल्ला बिन उबई सियासी शख्सियत बन के उभरा और अबू आमिर जो था ये मजहबी लीडर था, दोनों अल्लाह के नबी से इनाद रखते थे, बुगज था दोनों के दिल में, दोनों आपस में रिश्तेदार थे। अब्दुल्ला बिन उबई का बहनोई था अबू आमिर, लेकिन दोनों की औलादों को देखिए अल्लाह ने कैसे चुना। अबू आमिर की औलाद थे हंजला, जो के अल्लाह के यहां गए और अल्लाह ने फरिश्तों से उनको गुसल करवाया, उनकी डेड बॉडी उठाई गई तो पानी था नीचे, और इनकी बीवी अब्दुल्ला बिन उबई की बेटी थी। अल्लाह ने कैसे इनकी औलादों को इस्लाम के साथ जोड़कर, नबी सल्लम से जोड़कर इनको दुख दिया, इसका भी जिक्र कुरान में आता है। बहरहाल हुआ क्या कि अबू आमिर ने जब देखा कि अल्लाह के नबी की दावत तो फैलती जा रही है, एक अकेले आए थे, सात लोग मिलते गए, अब काफिला बन गया, ये रोम गया, वहां की हुकूमत से असाइलम लिया, वहां बैठकर इसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अब जाहिर है कि अगर चाहे रोम में बैठकर कोई करे तो उनको मदीना में भी तो कोई अड्डा चाहिए था ना अपने लिए। अब होता क्या कि जहां ये बैठते बात करते तो लोगों में बात जाने का खतरा होता, लिहाजा इसने सोचा कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म मदीना में बनाते हैं, अगर अब वो इस नाम पे बनाएंगे जी मुसलमानों के खिलाफ एक अड्डा है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती, लिहाजा इसने एक साजिश बनाई कि मैं मस्जिद के नाम पर एक इमारत बनाता हूं और अल्लाह के नबी के हाथों से इसकी ओपनिंग करा लेता हूं। देखिए नेकी का काम है, यहां आपको वो बात समझ आएगी जो शुरू में बताई कि नेकी हर नेकी नेकी नहीं होती। इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आकर जरा इधर नमाज पढ़ दीजिए। अल्लाह के नबी इजी गोइंग थे, सिंपल लिविंग थे, बहुत एफिशिएंट वर्ड्स में नहीं पढ़ते थे। आपने कहा कि हाँ आजकल तो मैं मसरूफ हूँ, तबूक की तैयारियां, वापसी पे आपके इधर आके नमाज पढ़ देंगे। अल्लाह को पता था कि ये मस्जिद नहीं बल्कि आपने भी चार लफ्ज इसके लिए पढ़ लिए हैं कि ये घात थी और कुफर की जगह थी और कैसे अल्लाह सुभान व तआला ने इस जगह को उनके बातिल अज़ाइम का कि माजगा रखा, दिरारन नाम ही देखे मस्जिद ज़रार दे दिया कि ज़रार देने को कुफर और तफरीकम बैनल मोमिनीन, ये तोड़ रहे थे कम्युनिटी को, ये मुसलमानों के दिलों में तफरके डाल रहे थे और इरसाद था। खैर वापसी पे फिर अल्लाह ने ये आयतें उतार कर बता दिया कि आप ऐसा ना करें, ये मस्जिद नहीं है, और फिर आपने जाकर उस मस्जिद को गिरा दिया था। इससे चंद बातें नोट कीजिए, बड़ी अहम बात है और खास तौर पे फिर इस बारे के थीम के साथ। अगर आपने अल्लाह के नाम पर अपने आप को बेच दिया ना, अपनी जान और माल को, वाकई आपने अपने आप को आज के बाद अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए जीने का इरादा किया है, तो आप इस बात को लिख लीजिए कि जिसने अपने किरदार की इमारत की बुनियाद तकवा पर रखी वो अंत तक चलेगा। ये इमारत जो है ना, यहाँ एक सिंबल है, ये तमसील है कुरान की, बहुत सारी मिसाल आपको कुरान में पढ़ेंगी तो ये एनालॉजी है कि यहाँ असल में किरदार करेक्टर की बात है। बहुत सारे लोग नेकी कर लेते हैं मगर खुद नेक नहीं बनते। मैंने सोचा था कि मैं ये जुमला तीन बार बोलूंगी, शायद आप इस वक्त फोन सुन रहे हो, शायद आप कुछ और कर रहे हो तो मिस हो जाए। लोग नेकी कर लेते हैं मगर खुद नेक नहीं बनते। लोग नेकी कर लेते हैं मगर खुद नेक नहीं बनते। ये बात है इधर। ये मस्जिद तो एक बिल्डिंग थी। इंसानों में कुछ लोग वो नेकियों के कामों में हिस्सेदार बन जाते हैं, अल्लाह उनसे काम लेने भी शुरू कर देता है, जिनके किरदार की इमारत अभी खोखली होती है। बुग़्ज़, कीने, हसद, गीबतें, अमानत का ख्याल नहीं। अल्लाह ताला यहाँ दो मस्जिदों को बनाकर मोमिन के किरदार और निफाक वाले नेक काम करने वाले को बनाकर पेश कर रहे हैं कि अपने लिए एक बात याद रखो कि रीबा का लफ्ज इधर आया। नेक काम करके भी अगर सुकून न मिले तो समझ लें कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि सुकून का मिलना नेकी के दुरुस्त होने की अलामत है। आप जितना ज्यादा नेकियां करके पुरसकून हैं, आप उतने खुश हैं, तो किरदार अच्छा कीजिए। आप और मैं आज इस वक्त मैं कुरान पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ मददगार हैं और आप सुन रहे हैं। हम तीन ही कैटेगरीज में इस वक्त सारे टीम को जमा कर लें, सुनने वाले, सुनाने वाले और सुनवाने वाले। हम तीनों के लिए यही बात है। मैं अपने ऊपर लेकर समझा देती हूँ क्योंकि बात बड़ी कड़वी है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नेकी का काम है ना, लेकिन मुझे खुद भी नेक बनना पड़ेगा, नहीं तो अल्लाह मुझसे ये छीन लेगा। अल्लाह ताला ये नेमत ज्यादा देर नहीं रखता। कितने ही नाम उभरे और कितने ही गिर गए, बचेगा वही जिसमें तकवा होगा, जो मस्जिद नबवी की तरह बेहतरीन किरदार वाली मस्जिद होगी। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें खटके वाली नेकियां ना करने वाला बनाए। कोई नेकी करें और कि हाय किसी को पता ना लग जाए, हाय कोई पता ना चले, तो समझ लें कि वो नेकी नहीं बल्कि वो मस्जिद दरार वाली बात है। अल्लाह ताला शक के कांटों को निकालकर खुले दिल से साफ तरीके से काम करने वाला बना दे। आगे आपकी प्यारी फेवरेट आयत आ गई, आयत 111, ईमान वालों के नफ्स और माल के सौदे, एक बै एक तिजारत, जन्नत का सौदा। इन्नल्लाहश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम। और यहाँ नोट कीजिएगा, पहले नफ्स है फिर माल है। गौर तो हमने पीछे करा, अब कुछ मजीद चीजों को देख लें कि पहले जान देनी पड़ती है फिर माल, कैसे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से इनकी जानों और इनके मालों को इस बात के इवज खरीद लिया है कि इनको जन्नत मिलेगी। वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। इस पर सच्चा वादा किया गया तौरात में और इंजील में और कुरान में, तीन मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स का रेफरेंस है। और अल्लाह से ज्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है। तो तुम लोग इस बै पर जिसका तुमने मामला ठहराया है खुशी मनाओ। खुशियां मनाने की बात है, इतराओ, फील ब्लेस्ड, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया इस सौदे के लिए, ये डील तुम्हें मिल गई, ये किसी और के हाथ में आने की बजाय ये नेकी तुम्हारे सामने आ गई। फस्तबशिरु बिबैकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस डील को सुनकर एक इंसान के दिल में एक तड़प तो आती है। देखिए, कभी कोई चीज सेल पे लगी और वो आपसे मिस हो गई और आपकी दोस्त खरीद लाई, अल्लाह की पनाह जो आपका दिल खोलेगा। लेकिन कभी अपनी नेकियों को भी तो इस तरह सोचा करें, कभी तो देखें। आप इमेजिनेशन में एक शख्स को लाइए, उसको अपना सेल फोन बेचना है। आप जब सेल फोन बेचने निकलते हैं, एक सूरत क्या है कि आपके घर वाले ही आपसे खरीद ले उन्हें फोने पे। आप कहते इधर ही बेच दूं, फिर कहते नहीं ये तो महंगा था, मुझे $1000 का आपका सेलफोन था, किसी जरूरत के तहत आपको बेचना पड़ा। आप उस फोन को घर वालों को देंगे तो वो तो आपको 400-500 भी नहीं देंगे, वो तो मुरव्वत में ही ले जाएंगे। और अपने तो वैसे ही कुछ करते हैं, बाहर वाले तो वो ना करें जो आपके अपने और बेतकल्लुफ लोग आपके दीन के साथ कर दें। बहरहाल आगे क्या हुआ, आप कहते हैं चलो मैं देखती हूँ, बाहर जाती हूँ। आप अपनी दोस्तों के किसी ग्रुप में डालते हैं कि आई एम सेलिंग माई फोन, कोई लेना चाहता है, और इट्स जस्ट लाइक न्यू। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, उनको भी पता है इसकी कुछ कीमत क्या है, वो है। आप क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपको मैं 500 दे दूंगी। आप कहते हैं अच्छा चले, एक दुकानदार भी है, जरा उससे भी जाके पूछ लूं। आप दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सेल माई फोन, कि आप यूज फोन खरीदते हैं। वो देखता है ये तो नया लग रहा है, वो तो खुश हो गया, उसको पता है ये 1000 का, मैं तो 800 का भी 900 का बेच लूंगा। लेकिन जाहिर है कि उसने प्रॉफिट लेना, वो तो आपको उसके 300-400 भी नहीं देगा। इतने में वहां खड़ी कोई एक और बहन जो वाकई नया फोन खरीदने आ रही थी और वो सुन चुकी थी कि ये फोन 1000 का है और दुकानदार उससे कितने का ले रहा है, वो आपको कान में कहती इसको ना दे, मैं आपसे ले लूंगी, मैं आपसे 700 का ले लूंगी। सवाल लिखिए, आप अपना सेलफोन किसको बेचेंगी? 300 वाले को, 500 वाले को या 700 वाले को? साफ जवाब सबका ठीक है, 700 वालों को बेचेंगी। बस आप और मैं जब इस दुनिया के बाजार में अपने इस नफ्स को, अब नफ्स में वो सब आ गया ना जो आपको शुरू में दे दिया, जी जान दिल दिमाग हर दो, बस आपके दो हाथ हैं, मैं अपने हाथों के से करके दिखा रही हूँ, ये मेरा नफ्स है और ये मेरा माल है, इसमें मेरी हर वो चीज है जो नफ्स से मुतल्लिक है और इसमें मेरी हर वो चीज है जो मेरे माल से मुतल्लिक है, इसी में औलाद भी है और इसी के अंदर घर गाड़ियां वक्त और स्किल सब कुछ है। अब इन दो को लेकर जब मैं बाहर निकलती हूँ तो हमारे सामने तीन किस्म की ऑप्शन आती है। कुछ लोगों के हाथों बिक जाते हैं, लोगों की बातें, लोग क्या कहेंगे, लोग उनका गम ही लोग हैं, लोगों की बातें लोग कहेंगे, लोग ये हैं सबसे सस्ते बिकने वाले। दूसरी किस्म के लोग अपने आप को और अपनी जान और अपने माल को अपने हाथों बेचते हैं, ये कौन है, ड्रग्स वाले, शराबी, कबाबी, भंगी, चरसी, सोए हुए और जुआ खेलने वाले, हर वक्त बस अपने, वो अपने लिए भी नहीं है, लोग उनको कहे सेहत खराब होगी, वो कहेंगे होने दो, वो कहते वक्त हो रहा है होने दो। लेकिन तीसरा बंदा जो इन दोनों से बचा के, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, सूरत शोरा में इसका जवाब आपको मिलेगा कि सबसे बचा के छुपा के आपने दिल के इस सेलफोन को बड़ा अच्छा पैक किया और ना लोगों को दिया ना आपने अपने आपको दिया, और आप अल्लाह कहते हैं कि ये मैं आपके सामने ले आया हूँ, ये है बाप की कैफियत कि तू बचा के न रख इसे, कि अल्लाह मैंने बड़ी हिफाजत से इस जान और माल को इस्तेमाल किया है, लिहाजा तू मुझे मेरी तरफ से इसको कबूल कर ले, अल्लाह सुबहान तआला आपसे भारी कीमत पे ले लेगा। वो इब्तदाई बातें सारी याद कीजिए, और किसी ने वो नहीं सुनी तो वो पीछे जाकर दोबारा सुन ले ताकि आपको पता लगे। आपके मेरे लिए इसमें सबक क्या है कि अपने आप को सस्ता ना बेचें, आप बहुत कीमती हैं, आपका नफ्स और आपका माल ये दो चीजें आपकी पूरी बिलोंगिंग्स को आपके समेत रिप्रेजेंट करता है। मौत की सूरत में लोग बस एक ही बात कहेंगे, जिन बातों का आपको डर था ना, तो लोगों ने एंड पे एक ही बात कहनी है आपकी मौत की खबर सुन के, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जाना कल अल्लाह के पास है तो आज क्यों ना जाए, जरूरत इस बात की कि आज ही उसको देकर चल पड़े। एक कॉल है इमाम जाफर सादिक साहब का, कहते हैं कि मेरी जान का घटिया चीज नहीं है किसे बेकार कामों में जाया कर दूं, मैं तो इसको देकर जन्नत हासिल करूंगा। और असल में ये आयत आपको पता है कब नाजिल हुई थी, बैत अकबे सानी में, सूरत तो मतनी है लेकिन कुछ आयत आपको मक्का की मिलती हैं जिसमें से कुछ और भी चीजें आगे जाकर हम देखेंगे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के साथ बैत की थी, दो दफा बैत हुई थी, 75 लोग थे, तो अल्लाह के नबी और हजरत अब्बास ने उनको काफी कमिटमेंट्स दी कि देख लो अगर अल्लाह के नबी को मदीना लेकर जाना चाहते हो तो सोच लो, वहां जाकर छोड़ ना देना। तो जब उन्होंने सारी बातें सुनी शरायत उसकी, तो कहा अच्छा ये बताइए कि इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो उस पर रियायत नाजिल हुई थी कि फिर तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी, और जन्नत के सौदे लेकर वो निकले थे, वो कम समझ लोग नहीं थे। लिहाजा आला जान को आला मकसद में खपा दो। आपकी मेरी जान ऐसी नहीं कि खुदकुशी करके ले ले, या लोगों को आपकी जान लेने के दर पे कर दें, हर वक्त जलते कुड़ते रहें, जलना छोड़ दीजिए, कुड़ना छोड़ दीजिए। अल्लाह आपको ये दे रहा है और ये सौदा क्या है, असल में है तो अल्लाह से, मगर कमिटमेंट लोगों से करनी पड़ती है, किसी सिस्टम से करनी पड़ती है, किसी गिरोह से, किसी इदारे से करनी पड़ती है। जरूरत है इस बात की कि आपको मुझे इस पे गौर करना है। अब आगे आप देखेंगे कि इसकी मजीद शिकों में आयत 112 में वो काम है, टोटल अभी गिनते जाइएगा, पहले ही बता रही हूँ, 9 सिफात हम पढ़ने लगे जो आपने मैंने इस सौदे को करने के लिए पूरी करनी है, कंडीशंस हैं जिसमें 6 इनफरादी हैं आपकी मेरी पर्सनल लेवल की हैं, और 3 इज्तमाई, यानी 3 का ताल्लुक इज्तमाई चीजों से है और 6 चीजों का ताल्लुक आपकी जाती चीजों से है, इस पे बात करेंगे। अत्ताइबून अलआबिदून अलहामिदून अस्साइहून, वो ऐसे हैं जो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, राह हक में सफर करने वाले, रुकू और सजदा करने वाले, नेक बातों की तालीम देने वाले और बुरी बातों से बाज रखने वाले हैं, और अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले हैं। और ऐसे मोमिनीन को खुशखबरी सुना दीजिए। अब बताइए आपको ये सौदा मंजूर है? जब सारी शरायत, सारी इफ्सन बर्ड्स पता लग जाए फिर ही तो उसके बस सिग्नेचर्स होते हैं ना, पहले तो सिर्फ वॉलंटियर फॉर्म दिया जाता है, आपको भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों लोग हर साल वॉलंटियर फॉर्म फिल करके इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को दिन रात खपा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये यूनिकनेस है शायद जिसको मैं फील करती हूँ, कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको दिन ब दिन अपने किरदार की इमारत को भी तकवा पर लाना है, और वो एक जुरुफ एक कच्चे किनारों वाले कुएं पर नहीं खड़े कि जिसके गिरने का हर वक्त खतरा हो। आपके किरदार और आपके अखलाक की कमजोरी किसी वक्त भी आपको दीन का काम करते हुए रोक देगी। आप नाराज होकर चले जाएंगे खुद ही, आप रूठ जाएंगे, आपको किसी की बात बुरी लग जाएगी, आप माइंड कर जाएंगे, आपका कोई मशवरा कबूल नहीं हुआ तो आप उस पर रूठेंगे। तो इस काम को करने से पहले ठुकी हुई ईंट की तरह खुद को बनाइए। मकसद अल्लाह की रजा है, बंदों की बातों को ना पीछे में लाइए, वरना हर वक्त मुकदमे भुगतने में और दूसरों की सुलह करते कराते में रहने वाले लोग फिर अल्लाह का काम क्या करेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से लेकर चले। इसमें सबसे अहम बात है जिसका इशारा मैंने आपको शुरू के चंक्स में दे दिया था, हुदूदुल्लाह। अब यहां ली हुदूद इल्लाह की सूरत में तो देख लें, आप एक एक सिफत पे गौर कीजिएगा। पहले तो तायबून में आप खुद हैं जो हिदायत के लिए सुन रहे हैं, तौबा कीजिए, आप भी इस काफिले में और इस डील में शामिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह आपको भी अंसारुल्लाह बनने का और अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि टायर्डलेस एफर्ट करने का मौका देगा। और आज मुझे जब रश्क आता है तो सिर्फ अपने अंसारुल्लाह पे आता है, बिलीव मी, या जो कोई और कर रहे हैं दीन का काम, क्योंकि आज के दौर का करने का काम ही ये है, जाती इबादत के साथ साथ दूसरी चीजें। तो तौबा, फिर इबादत, फिर हम्द और सियाहत के अल्लाह के रस्ते में भाग दौड़, अल्लाह हमारी ये कबूल कर ले। फिर रुकू, सजदे और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अगर इसको मैं आपको रिकमेंड कर दूं, बल्कि अगर साथी इसकी तफसीर का लिंक दे दें साथियों को, तो इंशाल्लाह आप इसकी तफसीर में और बहुत कुछ भी सुनेंगे, और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें अपने दीन की हदों की इस तरह पाबंदी करने वाला बनाए जैसे अबू बकर सिद्दीक ने की, कि ज़कात ना देने वालों ने जब इनकार कर दिया तो सब लोगों ने कहा कि अबू बकर इनको जाने दीजिए। हज़रत उमर तक ने कहा, अबू बकर आप देखिए अभी इस्लाम बड़ी कमजोरी की हालत में है। अबू बकर ने कहा, नहीं मैं नहीं, जिस एक तिनके की भी ज़कात को रोकेगा तो अबू बकर अकेला खड़ा हो जाएगा। बज़ाहर दुबले पतले अबू बकर जैसे लोग, तिनके में जान, लेकिन ईमान की कुव्वत, उनको अल्लाह के दीन की हदों को खड़ा करने वाला बना गया। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे ले जाए। अपने खानदानों में, अपने घरों में हदों के टूटने को नोट कीजिए। तलाक और रजू की सूरतों में हदें टूटती हैं, उसको गौर कीजिए। आज हम हर चीज पे खड़े हो जाते हैं, कहीं हंगामे हैं, कहीं धरने हैं, कहीं हुकूमत के आगे एजिटेशन है, कोई हद टूटती है तो उसके लिए क्यों नहीं खड़े होते। तो आज के दौर की नेकी और इस पारे के साथ की नेकी क्या है, कि आपको अल्लाह के दीन को कायम रखने के लिए खुद को खड़ा करना है, और अल्लाह आपकी मेरी मदद फरमा दे। आयत 113 से 114, सिर्फ निस्बत काफी नहीं। मा कान लिन नबी वल्लज़ीन आमनु अन यस्तग़फिरू, पैगम्बर को और दूसरे मुसलमानों को जायज नहीं कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़रत की दुआ मांगे अगरचे वो रिश्तेदार ही हों। इस अमर के जाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोस्ती हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआ मग़फ़रत करना वो सिर्फ वादे के सबब से था जो उन्होंने इनसे कर लिया था। फिर जब इन पर ये बात जाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो इससे महज बेताल्लुक हो गए। वाकई इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बड़े बुर्दबार थे। ये होता है दोगले लोगों का आखिरी अंजाम, कि अल्लाह उनकी बख्शिश से भी माफ करे। अब्दुल्ला बिन उबई अल्लाह के नबी के साथ साथ रहता था, लेकिन दिल में बुग़्ज़ था, खोटा था। असल में अपने मुफाद मुराद थे, लेकिन दिखाता ये था कि मुझे इस्लाम का फायदा चाहिए। दर्द अपना था, लेकिन दिखाता ये था कि मुझे इस्लाम का दर्द है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करने से भी रोक दिया। अल्लाह हमें ऐसे बुरे अंजाम से बचाए। अगर आज हम किसी अच्छे नाम से मारूफ हैं तो हमारी मौत तक अल्लाह करे कि लोगों को यही नाम याद रहे। आयत 115 से 116, बास पर्स किसकी होगी, सवाल है एक आपसे। मा कान लिन नबी वल्लज़ीन आमनू, अल्लाह सुबहाना ताला इसमें क्या फरमाते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस आयत में जो बात रख दी वो क्या है, वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ल कौमन बादा इज़ हदाहुम, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हिदायत करके बाद में गुमराह कर दे जब तक इन चीजों को साफ साफ न बतला दे जिनसे वो बचे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानता है। ये भी गौर तलब आयत है, बहुत इंसान का शऊर बेदार हो जाता है कि हिदायत के बाद भटकता बंदा तब ही है जब वो भटकने का इरादा कर ले। अल्लाह ने तो पूरी हुज्जतें दे दी, اور حقیقت یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت آسمان اور زمین میں، وہی چلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو دعا کر لیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ آگے اب وہ لوگوں کے قصے شروع ہو رہے ہیں کہ جو تبوک میں کسی نہ کسی وجہ سے رہے اور اللہ نے پھر فلٹر پلانٹ کے ذریعے ان کو پاک کیا۔ آیت 117، تنگی میں ساتھ دینے والے، یہ تھی صحابہ کی بڑی نیکی۔ لکھیے گا اس جملے کو، صحابہ کو جو رضی اللہ عنہ وردو ان کا لقب ملا نا، وہ ان کی انفرادی باتوں پہ نہیں ملا، کیونکہ اس بارے میں انفرادی سے بڑھ کر کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچنے کی باتیں۔ وہ گن گن کے نہیں دینا اللہ کو، مال گن گن کے نہیں دینا، گھڑی دیکھ کر آنا اور گھڑی دیکھ کے جانا نہیں، کہ میری تو جاب کے آور ہی یہ تھے، میری تو کمٹمنٹ یہ تھی اس دن کا، تو مجھے کہا ہی نہیں میں کیوں رکھوں۔ ایسے لوگ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جس پہ اللہ پہنچاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی خوبی سنیے گا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ تنگیوں میں ساتھ دینا، اور یہ تنگی کا ساتھ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ جو شروع دور کے ساتھی ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک ایک اینٹ جوڑ کر ایک دیوار بنائی ہوتی ہے، جنہوں نے اینٹوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے، جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ جب مسجد ٹپکے، بارش ہو تو چھت ٹپکے تو ان کے اوپر بھی پانی جاتا ہے۔ یہ کام کیجئے، آپ کسی ایسے سلسلے کا حصہ بن جائیں کہ جہاں آپ کی بنیادیں ہوں۔ آج کل آپ ساتھیوں کے اتنے خوبصورت میسیجز کچھ نہ کچھ میرے تک بھی پہنچتے ہیں، اور میں ان کو کہتی ہوں آپ رکھتے جائیں، میں رمضان کے بعد پڑھوں گی سارے، کہ جو کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں کسی بنیاد میں ڈال دیں۔ کوئی جوہر آباد کا نام لیتا ہے، کوئی گجرانوالہ کا کہتا ہے، کوئی فلاں کا، کوئی راشن پروجیکٹ میں، کوئی بچیوں کے ہاسٹل میں ڈالنا چاہتا ہے اس سے، کوئی کچھ۔ یہ ہیں وہ جذبے، ابتدا میں آ جائیے۔ دیکھیے بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے، یا ہمارا اسکول ہے جدھر میں ہم بیٹھے ہیں چند لوگ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی بھی ایک بنیاد ہے، اس کی کھڑکیاں دو سال پہلے شاید پوری بدل گئیں، اس کے بہت ساری چیزیں ہمارے اس 10 سال کے سفر میں چھوٹی موٹی بدلتی رہیں، لیکن آج تک جو نہیں بدلا اور جو نہیں بدلے گا قیامت تک، وہ اس کی بنیاد ہے، الا یہ کہ یہ عمارت ہی کو ڈیمالش کر دے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ نہیں بدلے جاتے، وہ بنیادوں میں ہوتے ہیں۔ آپ بنیادوں میں آ جائیے، آپ کبھی ریپلیس نہیں ہوں گے، نہ آپ چھوڑ کے جائیں گے نہ آپ کو کوئی جانے دے گا۔ یہ بھی لکھ لیں، آپ کہتے ہیں اچھا پھر یہ تو وہ شروع کے ہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بنیاد تو شروع میں ڈلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی آپ کو تو ایکسٹینشنز بھی ہوتی ہیں، آپ کو تو رینوویشنز بھی ہوتی ہیں، چار کمرے تھے دو اور ڈال لیجئے۔ آپ اپنی ذات کے ساتھ ایک ایسا پروجیکٹ لے کر آئیے کہ آپ اسی کے ساتھ دو کمرے اور بنا لیجئے۔ بنیادیں پکی ہونی چاہیے، بنیادوں میں شیشہ نہیں لگتا، بنیادوں میں ٹھکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ تو ہم اگلے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، سورت رات میں یہ باتیں ہمارے سامنے کھلنے والی ہیں۔ لیکن یہاں یاد رکھیے، اسلام کی بنیادوں میں پڑ جائیے۔ آج بھی جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ بنیادیں بنا رہے ہیں، کیونکہ جیسے خانہ کعبہ کئی دفعہ گرا کر دوبارہ بنایا گیا نا، اسی طرح اسلام کے اندر بھی اب آج کے دور میں وہ سارے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں دنیا میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسی ہی نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ آگے ہیں وہ تین لوگ جن کے نام پر کچھ کہتے ہیں یہ سورت توبہ ہے، یا ہمارا گمان ہے کہ اس پہ ہے، دیکھتے ہیں اس کا واقعہ ان کا پڑھتے ہیں۔ آیت 118-119، سستی کی قباحتیں، لیزی بوائے، آئی ایم لیزی۔ اپنی سستیوں کو ذہن میں رکھتے، دل میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ ولی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جان کیسے تنگ نہ ہوتی جبکہ جان سے پیاری شخصیت ہی سلام کا جواب نہ دے، تو بتائیے صحابہ کا دل کیسا کھٹک رہا ہوگا اس وقت۔ پھر ان کے حال پر توجہ کی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑے رحم والا ہے۔ اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ सच बोलने की वजह से इनको मौका मिला। तीन सहाबी जिसमें काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रुबी थे, और ये वाक्य आपको सही बुखारी में पूरा तफसील से मिल सकता है, वहां पढ़िए, डिटेल्ड क्लासेस में हम इसको पूरा पढ़ते हैं, कि जो कहते हैं कि मेरे पास कोई उजर नहीं, सिर्फ दिल्ली डेली थी, चला जाऊंगा ना, मेरी तो सवारी भी अच्छी है, खबरें सब मिल रही थी कि लोग तैयारियां कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फिर ये भी पता चला कि अल्लाह के नबी कुछ कर गए हैं, लेकिन ये सोचते सोचते कि अच्छा मैं जरा घंटे ये काम निपटा लूं, ये ऐसे जैसे हम अपनी नमाजें नहीं डिले करते, जरा ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, अच्छा जरा ये समेट लूं, इतने में काफिला चला गया, फिर और सोचती अच्छा चलो अब तो पता नहीं कहां चले गए होंगे, और कहते हैं इसके बाद तो बस फिर मदीना की गलियां थी और मैं था, मुझे वहां औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें अगर आती या चंद बूढ़े थे, और उस वक्त मेरे दिल में ये गिल्ट शुरू हो गया, और फिर वहां से जो खबरें आई वो बड़ी खूबसूरत थी, जब वापस आए तो मुझे जो मुनाफिकीन थे उन्होंने झूठे सच्चे अजर पेश किए, जब भी हम सूरत के शुरू में पारे के शुरू में पढ़ चुके हैं, कहने लगे मेरे भी दिल में आया, और ये शायर भी थे, और आप कहते हैं शायर कैसी खूबसूरत बातें बना लेते हैं, इधर के उधर करते हैं, किसी को पता भी ना चले, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने नीयत की कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आके अल्लाह के नबी को साफ साफ बता दिया अल्लाह के नबी कोई उजर नहीं है, इससे ज्यादा तो आसूदगी कभी थी नहीं, और यहां फिर 111 आयत के साथ जोड़ लीजिए कि जान और माल दोनों से आसूदा थे, लेकिन मैंने बस सुस्ती की वजह से पीछे रह गया। खैर अल्लाह ने मामला अपने हाथ में लिया। 50 दिन तक सोशल बायकॉट, शुरू के 40 दिन, फिर दोबारा 10 दिन और बढ़ गए। मक्का की गली, मदीना की गलियां थी, दाकत अलैहिम अल अर्थ, जिधर जाएं लोग मुंह फेर लें, अल्लाह के नबी को सलाम करें जवाब नहीं मिल रहा, अल्लाह के नबी इनकी तरफ नहीं देखते लेकिन जब ये किसी और तरफ देखते तो आप उधर देखते, अल्लाह ताला ने इन पे जमीन तंग की, इनको ऐसा सोशल बायकॉट दिया जिसको आज आप अपने इस लॉकडाउन से ले लीजिए, किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाए जाकर पूछिए अछूत समझते हैं, होटलों में रख के बाहर दरवाजों के बाहर खाना छोड़ जाते हैं कि कहीं आपको कोरोना ना हो जाए, घर वाले छोड़ जाते हैं, बाहर वाले क्यों करें अपनी जान को मुश्किल में, क्या डिसिप्लिन था। लिखिए ये है इस वक्त असाबिकून अलवलून, जो दीन के काम करें ये आपके लिए पा रहा है, नए लोगों के लिए नहीं है ये सब कुछ, इतना डिसिप्लिन कि जब मना कर दिया तो किसी ने चोरी छुपे उनको खाना नहीं भेजा, किसी ने अंदर खाते नहीं कहा चुप करो अल्लाह के नबी आजकल गुस्से में, मैं कर लूंगी तुम जाओ जाओ मैं तुम्हारी जगह पे आ जाऊंगी, आपस में कोई इज्जत खुद नहीं कर ली, आपके दौर का ये डिसिप्लिन चाहिए आज के दौर में अगर इस्लाम को पनपना है, और बात सच है कि ना कहीं जहां में पनाह मिली, जब अल्लाह ही जगह देता है तो जगह मिलती है, अल्लाह तो तैयार बैठा है कि उसकी तरफ पलटे लेकिन हम उसकी तरफ नहीं पलटते, वो कहते ना कि हम तो माइल बकरम है कोई साइल नहीं, तो बहरहाल बड़ी संगीन तौबा थी, अल्लाह ने जब तौबा कबूल की अल्लाह के नबी पर आयतें नाजिल हुई, फिर मदीना की गलियों से लोग पहाड़ियों से उठ उठ के भाग रहे हैं या काब, और ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था कि जब अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की, अपने ऊपर लीजिए अलकलबुल बाखिसन हिदाया, तौबा की तरफ आ जाइए, आपकी भी जिस दिन तौबा, जिस दिन अल्लाह आपको भी झांक कर कह दे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तो वो आपकी मेरी जिंदगी का भी खूबसूरत दिन होगा, अल्लाह ताला में सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आगे आयत 120 से 121 है, सहाबे कराम के अल्लाह के नबी से मोहब्बत, ये चाहिए आपको दीन के नाम पर, किस तरीके से सहाबा मर मिटते थे, मा कान लिअहलि अल-मदीनति वमन हौलहुम, मदीना के रहने वालों को और जो देहाती इनके गिर्दो पेश है, इनको ये जेबा न था कि रसूलुल्लाह को छोड़कर पीछे रह जाएं, और न ये कि अपनी जान को इनकी जान से अजीज समझे, यह इस सबब से कि इनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो थकन पहुंची और जो भूख लगी और जो किसी ऐसी जगह चले जो कुफार के लिए मुजबे गैज हुआ हो, और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, इन सब पर इनके नाम एक एक नेक काम लिख लिया गया। अल्लाह चुन चुन के नेकियां लिखता है आपकी, आपने ये किया, आपने ये रखा, आपने वो पढ़ा, आप देखिए ऐसे नहीं लगता अल्लाह फुटस्टेप्स को देख रहा होता है, ईमान वालों के फुटस्टेप्स को देखता है कि इसको कांटा चुभा फरिश्ते लिख लो, इसको बर्फ चुभी लिख लो, इसका पांव फिसलते फिसलते बचा लिख लो, ये घर से घर वालों की नाराजगी को मेंटेन करके मैनेज करके निकली लिख लो, अल्लाह आपकी एक एक आंसू को जानता है, अल्लाह आपके एक एक आंख को जानता है, अल्लाह आपके कमर के एक एक दर्द को जानता है, आपके हाथों को जो गट्टे पड़ जाते हैं लिख लिख के, कल क़यामत के दिन अल्लाह एक एक अजर देगा, क्योंकि यकीनन अल्लाह के हाँ मुहसिनों का अजर जमारा नहीं जाता। अल्लाह सुबहाना ताला सब छोटे बड़े को लिखता है और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान उनको तय करने पड़े ये सब इनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह इनके अच्छे कामों का इनको अच्छा बदला दे। रखता है वो आपसे? देखिए दुनिया में कोई नहीं रखता, तो अल्लाह कैसे रखे? आपको कोई खाना भेज दे, आपका दिल करता है मैं भी भेज दूं। कोई आपके बच्चे को 100 रुपए दे दे, आप कहते हैं मैं भी 100 ही दे दूं कम से कम। अल्लाह नहीं रखता। लिखिए, अरे आप जान लगा रहे हैं ना, वक्त लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं और अपनी अन्ना को मार रहे हैं। वापस आ जाइए, अन्ना की वजह से अगर कोई चीज छोड़ी थी वापस आ जाइए। आपको सीने से लगाएगा कुरान और इस्लाम, अल्लाह के नबी ने यही सिखाया है। ये जो जान देनी पड़ती है ना, इसमें बाज दफा मर्जियां भी होती हैं। बस बुरा लगा, कोई फैसला बुरा लगा, कोई रूल बुरा लगा, किसी एडमिन की बात बुरी लगी, वापस आ जाइए, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। अगर आप एक मशीन का हिस्सा बनकर काम कर रहे थे, फिर करते रहिए, कोई ताना नहीं अल्लाह के रास्ते में मिलता, क्योंकि अल्लाह आपके छोटो छोटो को बड़ा करता है। और याद रखिये, आज सुबह वही सिस्टर जिन्होंने पहले भी आपके साथ मैंने शेयरिंग करवाई भेजी थी आपको, आज सुबह उनकी शेयरिंग आई, अगर चाहेंगे तो आपको बाद में दे दी जाएगी। तो वो आज उस जगह से गुजरी जहां वो मेरे साथ पढ़ती थी, ह्यूस्टन में रहती हैं, वो भी ह्यूस्टन की थी, मैं भी उधर ही थी। आज मुझे फिर दिल को एक हुक लगी, तस्वीर उन्होंने उस जगह की भेजी जो हमारा पहला कैंपस, जिसको आज अगर मैं कहूं कि यूएसए में नूरुल कुरान का पहला ऑन साइट कैंपस जिसको मैं कह सकती थी, उसकी तस्वीर आज मैंने सुबह देखी है। तो जहर मेरे भी दिल में जज्बात है, मोहब्बत है, तो वो अपनी फीलिंग्स दे रही हैं कि आज मैं कहीं काम से निकली थी, इधर से गुजरी, वहां रुक के उन्होंने तस्वीर खींच के भेजी है कि यहां से जब मैं गुजरी थी तो पहली दफा मुझे इस कुरान की तलब लगी थी और मैंने जो ईमान लिया आज मुझे दोबारा फिर वही मिल रहा है, मैं पारा साथ सुन रही हूं साथ साथ। आप यादों से कैसे जाएं? दिल आप दिल में बसते हैं, फिर क्या अगर गुस्सा आ गया, दिल बुरा हो गया, नाराजगी हो गई, जो भी हो गया, किसी का भी है, ये नफ्स के अंदर आती हैं चीजें। याद रखिए अपने ऊपर जुल्म ना करें। और यहां मुझे वो बात याद आ रही है कि बेकार बिकोगे। एक मैकेनिक मशीन के अंदर गाड़ी के पुर्जों को लगाने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी का पुर्जा लग नहीं रहा था, कहने लगा मैं तुझे कहता हूं लग जा, लोहे का टुकड़ा है, लग जा तो सोने के भाव बिकेगा, उतर गया तो कबाड़ी में बिकेगा। हम में से हर एक के अंदर कोई बड़ी खूबी नहीं है, ये बस जब एक टीम वर्क हो जाता है, मिलजुल के हम एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं तो कोई अच्छा छोटा सा काम हो जाता है। लोग सोचते हैं किसी एक का काम है, ये एक का काम नहीं है, ये दीन टीम वर्क के साथ चलता है। आप अकेले हैं, कल आपको भी टीम बनानी पड़ेगी और वो भी टीम फिर इधर उधर से बची खुची टीम ही मिलती है, तो क्या फायदा आपके दुनिया के जाने तक आप अभी उन्हीं मरहलों पे पहुंचे जहां आज मौजूद है। तो जरूरत इस बात की कि अल्लाह के रास्ते में छोटे बड़े कामों को चलते जाइए ताकि अल्लाह से अजर पाने वाले बन सके और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे। इसी का अमली तरीका है आयत 122 में, हर इलाके में से कुछ लोग दीन के लिए निकलें। ये है दीन की खूबसूरत सी तरीके की चीज कि जिस पे अमल अगर आज पूरी उम्मत कर ले तो पूरी उम्मत में चंद सालों के अंदर से कम अज कम जहालत इस हद तक खत्म हो जाए कि सबको कुरान पाक का तर्जमा और नमाज और छोटी छोटी सूरतों की समझ आ चुकी हो। वमा कानल मोमिनून अली अनफिरू काफ, और मुसलमानों को ये नहीं चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो इनके पास आए डराएं ताकि वो डर जाएं। ये है वो खूबसूरत आयत, इसकी तफसीर सुनवा देंगे आपको, लिंक दे देते हैं क्योंकि ये कम अज कम एक घंटे की बात है, लेकिन खुलासा क्या है कि जब तबूक के सफर से लोग वापिस आए तो अब लगा कि ओहो हमने तो मिस कर दिया, तो अब अगले किसी मरहले पे निकलने की तैयारियां करें, क्या करें कैसे करें। कहा नहीं, अभी बैठकर असाबे सुफा बनो, कुरान पढ़ो, सीखो, स्टैंडिंग आर्मी हो, जहां दोबारा मौका आएगा तो तुम्हें जंग के लिए बुलाया जाएगा। ये है इस आयत का मफहूम, दिया तफक्कहु, दीन की फिक क्या है। हमने तो फिक को झगड़ों का नाम बनाया, तफक्कहु फिर दीन वही है जिसको आप शायद 8वें पारे में आपको दिया है ना, ला यफ्कहून वाला दिल। तफक्कहु ये है कि कुरान पढ़ के आपको ये समझ आ जाए कि मैंने रहना नहीं है, मैं मिट जाऊंगी, मुझे दुनिया में अपने सदका जारिया छोड़ने हैं, मुझे दूसरों के फायदे का बनना, ये है लिए तफक्कहु फिद दीन। और इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि हर इलाके के लोग कुरान सीखते हैं, फिर कुछ ट्रेनिंग्स लेते हैं और फिर आगे जाकर अपने अपने इलाकों में पूरी गाइडलाइन के साथ काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने थोड़े से वक्त में ऐसी कितनी मिसालें मेरे अपने सामने मौजूद है कि जिन लोगों ने रूल्स को फॉलो किया, सिस्टम को लिया, खुद सबीलुल जन्ना कोर्स किया और उसके बाद नूरुला नूर में लगे रहे, फिर इल्म नाफिया से बढ़कर आज अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते की एक छोटी सी क्लास अल-हिक्मतुल बालिगा में है। आप देख रहे हैं और देखेंगे भी आगे जाकर के ये लोग किस तरीके से अंधेरों में रोशनी का जरिया बनेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस पढ़ने पढ़ाने के साथ जुड़े रखे और जब कहीं कोई अमली जंग और जिहाद हो तो फिर चल पड़े। सारे जंगों में नहीं जाएंगे लेकिन सबको अपने अपने इर्द गिर्द के अंधेरे तो बहरहाल दूर करने हैं। और आगे 123 से 128 मुनाफिकों के तस्करे। सूरत अपने ततीमे की तरफ है। या अय्युहल लज़ीन आमनु क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम, ऐमान वालो इन कुफार से लड़ो जो तुम्हारे आस पास है और इनके लिए तुम्हारे अंदर सख्ती होनी चाहिए। और यकीन रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं कि सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज्यादा किया है। देखिए मजाक उड़ाते थे। शायद आपसे भी कल कोई पूछ रहा हो कि अच्छा जी सुनाएं भाई, 3 घंटे बैठी रहती हो और शुरू आखिर शेयरिंग सारा कुछ सुनती हो, कितना भी ईमान बढ़ा है। तो अल्लाह कहते हैं बस वो लोग जो ईमानदार हैं इस सूरत ने इनके ईमान को ज्यादा किया और वो खुश हो रहे हैं। क्या मैं आपसे ये सवाल कर सकती हूँ, क्या सूरत तौबा ने आपके ईमान को ज्यादा किया? मुझे तो एक तौर पर फिर एक किस्म का रिफ्रेशमेंट मिलता है। आगे देखिए दिलों के मरीज, आयत 125 में वो लोग जिनकी बात है और जिनके दिलों में रोग है, इस सूरत ने इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी और वो हालत कुफर ही में मर गए। और क्या इनको नहीं दिखलाई देता कि ये लोग हर साल एक बार या दो बार किसी न किसी आफत में फंसे रहते हैं फिर भी तौबा नहीं करते और ना नसीहत कबूल करते। सुबह जब मैं ये आयत पढ़ रही थी तो मैं कह रही थी अल्लाह ताला हर साल में एक या दो बार क्या, हम तो एक साल पूरे से आफत में फंसे हुए। अल्लाह ताला इस वायरस को हमारे से दूर कर दे, हमें इससे दूर कर दे। जो इसका शिकार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी जान ईमान की हिफाजत कर दे और ऐसी और इस तरह की आने वाली सारी तकलीफों को अल्लाह ताला इस दुआ के साथ दूर कर दे कि हम तेरे काम करेंगे। अल्लाह हमें मोहलत दे जिंदगी की कि हम बढ़ चढ़कर तेरे दीन को फैलाने का काम कर सके और अल्लाह ताला में तौबा करने की और नसीहत कबूल करने की तौफीक दे। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ताला ने इनका दिल फेर दिया इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। अल्लाहु अकबर। देख लीजिए 127, अल-क़ल्बुल मसरूफ़ु अनिल हक़्क़ी। ये जो आप कहते हैं ना मैं बड़ी मसरूफ हूँ, वो भी यही होता है, असल चीजें छोड़कर आप किसी और चीज में फिरे होते हैं। तो मसरूफ कौन लोग होते हैं इस आज की रोशनी में देखिए। हक से फिर जाने वाले दिल, दिखावे के लिए दीनी महफिलों में शिरकत करने के लिए आते हैं, मकसद कोई और होता है आने का, कुछ और अंदर से चाहिए होता है, देखना कुछ और है, किसी और से रबते करने, किसी और से कुछ राज न्यास लेने, देखने में लगता है कि ये दीन सीखने आ गए। और खिलाफ मिजाज हुक्म सुनकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, फिर चिटचाट करते हैं, देखा सुना तुम्हें कहा गया मुझे कहा गया। तो दुआ कीजिए कि इल्म की महफिल में सिर्फ इल्म सीखने के लिए आए वरना दिल और सख्त हो जाएगा और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों को फिर फेर देता है। और यहाँ ये भी देख लीजिए कि कनखियों में इशारे करने, इल्म की महफिल में निफाक वाले दिल के साथ बैठना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप हिदायत की तरफ नए नए आ रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप मुनाफिक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कमजोर ईमान के हो सकते हैं। जितना सुनते जाएंगे सीखते जाएंगे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाते जाएंगे। अब आगे सहाबा कराम का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या खूबसूरत मामला था, इसको देख लीजिए आयत 128। अल्लाह के नबी की शान में आप कह सकते हैं कि ये आयत आपको मुझे समझ आनी चाहिए। फरमाया, एहसास दिलाया गया सहाबा कराम को भी और आज हम सब को भी और मक्का और मदीना आलों को भी कि तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन से हैं, जिनको तुम्हारे नुकसान की बात बड़ी गिरां गुजरती है, जो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमानदारों के साथ बड़े शफीक और मेहरबान हैं। अल्लाह के नबी की मोहब्बतों की बात है। हरीसन अलैकुम, तुम्हारी तकलीफ इनसे देखी नहीं जाती। रऊफ और रहीम, सख्त मिजाज नहीं, सख्त खून नहीं, मीठी बात करते हैं, नरम बात करते हैं, तुम्हारे हाल अहवाल पूछते हैं, तुम्हें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा लीडर अच्छा किसको मिलेगा। और उससे भी बढ़ के रातों को उठकर तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं। बिल्कुल सूरत आल इमरान की उस आयत का अंदाज है कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंतलहुम, अल्लाह ताला हमें अगर कहीं ऐसे मुकाम पे ले जाए कि चंद लोग हमारे से जुड़ जाएं तो हमारे दिलों में उनके लिए ऐसे ही जज्बे डाल दे। और आगे फिर आखिरी आयत सूरत की जिसमें आपको मुझे एक बहुत ही खूबसूरत दुआ सिखाई जा रही है, आयत 129, गमों से बेनियाज करने वाला वजीफा। فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر یہ روگردانی کر دیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. یعنی آپ کے اتنے پیار سے بلانے کے باوجود نہیں آتے، آپ کے جذبوں کی ان کو قدر نہیں، آپ کے پکارنے کو یہ بالکل ایسے سوچتے ہیں کہ جیسے کسی فالتو بندے کا کہنا سننا ہے، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ کو انہوں نے کیا کفایت دینی ہے، یہ تو آپ ان سے صرف محبت کرتے ہیں، کام تو آپ اس سے بھی اچھے اور کر رہے ہیں، نہیں آتے تو نہ آنے دو، بلکہ تم پھر ایک دعا سیکھ لو. یہ ہے وہ دعا جو آپ کے میرے لیے آج دعاؤں میں سے ترتیب کے اعتبار سے چلنے والی اگلی دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. حدیث سے اس دعا کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ صبح و شام 7 بار، یعنی فجر کے بعد سے لے کر یا اس سے پہلے بھی ایون شروع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح عصر سے لے کے اس کے بعد کے وقت میں آپ اگر یہ دعا 7 بار پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے دنیا تو دنیا ہے، آخرت کے غم بھی اللہ دور کر دے گا. مانگا کریں، دعا صبح میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سہولت رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کر دے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کا بھروسہ دین کے کام پر بھی بندوں پہ نہیں اللہ پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کر دے. یہاں ہم نے ایک اور خوبصورت مدنی سورت پڑھی، سورت آل عمران اور سورت الانفال اور سورت مائدہ. آپ کی میری گھریلو زبان میں ہیوی میل تھا، جس کو آپ بریانی کہہ لیں، قورمہ کہہ لیں، نہاری کہہ لیں، میرا رہا اب میں اور نہ بولوں کہ آپ کو بھوک نہ لگ جائے، جو ہم ہیوی کھانا پائے اور سموسے پکوڑے، جس کے بعد کہتے ہیں کھایا تو کچھ نہیں، پھر بھی پیٹ کیسے بھر گیا. لیکن اب اس کے بعد مستقل 14 مکی صورتیں آ رہی ہیں، چند باتیں نوٹ کر لیجئے کوئکلی. سورت یونس ہمارے سامنے ہے، ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے تو 10ویں نمبر کی سورت ہم پڑھنے لگے ہیں، اور آیت نمبر 1 سے لے کر 109 تک ہم اس پارے میں پڑھیں گے، پوری سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ حصہ آگے سورت خود کا آئے گا. اس پوری صورتوں میں، یعنی 11ویں پارے سے لے کے 18ویں پارے تک، 18th پارا فرام 11th پارا، ہم مکی صورتیں پڑھنے والے ہیں. صرف سورت رات کے بارے میں تھوڑا سا ہے مفسرین کے ذہنوں میں اشکال کہ وہ مکی ہے کہ متنی ہے. جس طرح یہ صورتیں قرآن پاک کے بالکل مڈل میں ہیں، جس طرح آپ ایسے سوچئے کہ جاتے ہوئے بیچ میں اب ہم ٹاپ پہ ہیں پھر جائیں گے، اسی طرح زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درمیانے دور میں، یعنی مکی دور کے درمیان کی صورتیں. آپ کو انداز سے پتہ چلے گا انشاءاللہ، یہ بھی خوبصورت ربط ہے، اور آپ کو ان کا انداز بڑا ہلکا پھلکا دکھے گا. سورت یونس کا انداز سورت الانعام والا ہے، یعنی تذکیر بھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سورت یونس میں آپ کو خاص طور پہ جس کا رکوع نمبر 8 اور 9 ہے، اس میں سورت الاعراف کا تھوڑا سا انداز ہے، شدت ہے. پھر اس کے بعد اس میں انبیاء اور رسول کا انداز آپ کو دکھے گا، اور قوم یونس جس کے نام پر یہ سورت موسوم کی جاتی ہے اس کے لیے صرف ایک آیت ہے اس سورت میں، ان کی توبہ کا ذکر ہے، چونکہ پارے میں توبہ کا ذکر ہے تو اسی کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور آگے ان کا قصہ پھر سورت صافات میں آئے گا. آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیں. اگر اس حصے میں جو سورت یونس کے مضامین ہے اس کا ایک اوور ویو کر لیں تو کائنات کی نشانیاں، یعنی آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ آپ پکنک پہ گئے ہیں اور آپ کے ارد گرد مختلف چیزیں جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں. ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اس میں، رات دن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، دنیا کی زندگی پر مطمئن رہنے والے لوگ کل کیسے حسرت کر رہے ہوں گے، اور پھر ہدایت پر چلنے والے لوگ، انسان کا شر اور خیر کو مانگنا، قرآن ہر دور کے تقاضے پورے کرتا ہے، دنیا بھی کھیتی ہے، یہاں جو بیج ڈالیں گے کل وہاں وہی فصل آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ لبائی کہنے والا بنائے. پھر اسی طرح ہدایت طلب کرنے والوں کو ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر عمل نہ کرنا کل حسرت کا ذریعہ ہوگا، قیامت کا بیان ہے، اور قرآن دل کی بیماریوں کا علاج، یعنی قرآن میرے دل کی بہار. آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے نور القرآن کی سلوگن آیت بھی اسی صورت میں آ رہی ہے. जिसको आप अजमत कुरान की बेहतरीन आयत कह सकते हैं। फिर अल्लाह मोहलत देता है लोगों को ताकि पलट आए। खुशी और गम दोनों इम्तिहान के पर्चे हैं। जन और गुमान बदतरीन गुना है, इसलिए बदगुमान नहीं होना चाहिए दूसरों से। और वलीउल्लाह कौन होते हैं, उनका तस्करा इस बारे में इस सूरत में आएगा। फिर ईमान वाले एहसान फरामोश नहीं होते, लिहाजा मोहसिनों के साथ मामला अच्छा रखिए। इस्लाम दीने दलील है, बेदलील बातें कहनी सुननी छोड़ दीजिए। फिर अम्बिया के तस्करे इस सूरत में भी आपको मिलेंगे, और खास तौर पर कौम यूनुस की तौबा और मोमिनीन की निजात और ईमान वालों का अकीदा कि अल्लाह हमें बचा लेगा। और खास तौर पर सूरत यूनुस में आपको कुरान की बात बहुत मिलेगी कि इसको बदल दो। आप पढ़ के देखेंगे अभी तो आपको अंदाजा होगा कि या तो इसको बदल दो या कुछ। तो इसका एक मेन थीम लिख लीजिए कि ये दीन, ये कुरान किसी की मीरास नहीं, कि इसको बदल दो। आइए शुरू करते हैं। अंदाज बहुत सॉफ्ट है, तर्जमे से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। आयत 1-4 ईमान वालों के लिए खुशखबरियां हैं। अलिफ लाम रा हरूफ मुकद्दात हैं। ये पुर हिकमत किताब की आयतें हैं। क्या इन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब लोगों को डराइए, और जो ईमान ले आए हैं इनको ये खुशखबरी सुनाइए कि इनके रब के पास इनको पूरा अजर मर्तबा अजर और मर्तबा मिलेगा। काफिरों ने कहा ये शख्स तो बिलाशुबा सरीख जादूगर है। यानी मक्का का वो दौर जब अल्लाह के नबी की दावत आम हो चुकी थी, तो उनको बताया जा रहा है कि तुम मान जाओ कि ये शख्स वाकई अल्लाह का भेजा हुआ है, ये खुद नहीं करता। लेकिन देखिए लोग आपको जादूगर कहते थे। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 रोज में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो हर काम की तदबीर करता है, इसकी इजाजत के बगैर कोई इसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम इसकी इबादत करो, क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते। गौर कीजिए इस पे। तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है, फिर गौर करते क्या बनेगा। जरा से अपनी मौत को सोचें, अल्लाह को के सामने पेशी होने वाली है, और आज मरे तो कल सामने अल्लाह के मौजूद होंगे। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है, बेशक वही पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा। क्यों? ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक काम किए, इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन लोगों ने कुफर किया इनके वास्ते खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा, और दर्दनाक अजाब होगा इनके कुफर की वजह से। कदम असित के नींदा रब्बी हिम। दुआ कीजिए अल्लाह हमें इस सच्चाई के रास्ते पे चलाता ही रखे। फिर आगे आयत नंबर 5-6 में रात और दिन में कुछ निशानियां हैं कायनात की। और सूरत तौबा के बाद तो आपको ये क्या लग रहा है, स्वीडिश या फिर आपका कावा और पत्ती। यानी हम हैवी खाने के बाद लाइट खाना हजम करने के लिए खाते हैं, तो इसको महसूस कीजिए। इसमें वही तीन मजमून आएंगे, तौहीद, रिसाला और ईमान बिल आखिरा, और इसको एंजॉय कीजिए। बिल्कुल ऐसे फील करें कि आप साइट सीइंग पर गए हुए हैं। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह ऐसा है जिसने आफ्ताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नौरानी बनाया, और इसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब को मालूम कर लिया करो। अल्लाह ने ये चीजें बेफायदा पैदा नहीं की, वो ये दलाइल इनको साफ साफ बतला रहा है जो दानिश रखते हैं। बिलाशुबा रात और दिन के यक़े बदीगरे आने में, और अल्लाह ने जो कुछ आसमान और जमीन में पैदा किया है, इन सब में इन लोगों के वास्ते दलाइल हैं जो अल्लाह तआला का डर रखते हैं। अल्लाह हमें अपना डर दे दे। आगे आए 7-8, दुनिया की जिंदगी पर मुतमईन लोग। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना कर दे कि जो सिर्फ दुनिया पे मुतमईन हो जाएं। इन अल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना व रदू बिल हयाति दुनिया, जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं है और वो दुनियावी जिंदगी पर राजी हो गए हैं और इसमें जी लगा बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना इनके अमाल की वजह से दोजख है। दुआ कर लीजिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कि अल्लाह हमारे दिल से दुनिया को निकाल दे। फिर याद रखिए, निकालने के बाद भी बड़ी होती है बल्कि ज्यादा मिलती है। जितना आप दुनिया को दिल में रखते हैं ना, दुनिया के पीछे भागते हैं हदीस के मुताबिक, और जब दुनिया को दिल से निकालें तो दुनिया आपके पीछे भागती है उस तितली की तरह, जिसको आप छोड़ें तो वो आपके हाथ पे बैठती है। तो दिल से दुनिया निकालेंगे तो और मिलेगी, ये एक नुस्खा है आपको बता रही हूँ दुनिया मजीद लेने का। फिर आयत 9-10, हिदायत पर चलने वाले, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाती, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर ले कि जिनके लिए फरमा दिया कि यहदीहिम रब्बुहुम भी ईमानीहिम, यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए हैं, इनका रब इनको इनके ईमान के सबब इनके मकसद तक पहुंचा देगा। दुआ कीजिए अल्लाह ऐसा ईमान दे जो मकसद तक पहुंचा दे, बीच रास्ते में न रोक लेना। नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, देखिए खूबसूरत सा फ्लो चार्ट है आपके मेरे सामने, आयत 9, यहदीहिम रब्बुहुम भी ईमानीहिम, इससे क्या मुराद है? मुराद शेख की ईमान के बदले में हिदायत मिलती है, यह आपकी हिदायत की आयत भी है। नेक आमाल की तौफीक हिदायत की वजह से मुमकिन होती है। नफामंद इल्म और इस पर फिर अमल की तौफीक मांगिए, तो जरा सा चेक कीजिए कि क्या वाकई फिर आप भी हिदायत की तरफ मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या होगा? आपको अबदी हिदायत मिलेगी, जन्नत के दरवाजों पे आपको खड़ा कर दिया जाएगा। जरा सा तसव्वुर में अपने आप को जन्नत के दरवाजे पे लाइए और सुनिए इस आयत को। इनके मुंह से ये बात निकलेगी सुभान अल्लाह, और इनका बाहमी सलाम ये होगा अस्सलामु अलैकुम, और इनकी आखिरी बात ये होगी कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। पीछे सूरत अल अराफ में आप पढ़कर आए, यहां दोबारा आपको पता चल गया कि जन्नती जन्नत में जाकर तारीफें अल्लाह की करेंगे और सलाम करेंगे। तो क्या पता चला है 10 में, आपस में सलाम को फैलाएं, अफशुस सलाम, हाय बाय नहीं करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत 194, अबू मुआविया और वकी और आमश ने यह हदीस सुनाई, यानी इस चेन से हमारे तक पहुंची, और आगे जाते हुए ये चेन पहुंचती हजरत अबू हुरैरा तक। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे यहां तक कि तुम मोमिन हो जाओ, और तुम मोमिन नहीं हो सकते यहां तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या तुम्हें ऐसी चीज ना बतलाऊं कि जब तुम इस पर अमल करो तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगो, और वो क्या है कि आपस में सलाम को आम करो। तो आज के बाद अस्सलामु अलैकुम को आम कीजिए। आयत 11-13, इंसान का शर और खैर मांगना, यानी चूंकि इंसान को गैब की चीजें दिखती नहीं है ना, तो कभी कभी अपने लिए बुरी चीजें मांगता है। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रस्ते जालहुम, और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़े कर दिया करता जिस तरह वो फायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो इनका वादा कभी कबूरा हो चुका होता। कभी अपने लिए बद्दुआ न मांगे, क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी बद्दुआओं के फेर में आ जाता है। बस हम इन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं, इनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते फिरे। यानी जब बंदा कुरान सुनने की मौके को भी जाया कर दे तो फिर अल्लाह भी उसको छोड़ देते हैं कि जाओ फिर जो करना है करो। ये ऐसी जैसे बच्चा माँ की बात ना माने ना, तो फिर माँ कहती जाओ फिर, अब गिर गए चोट लग गई तो मेरे पास रोते हुए ना आना। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे भी बैठे भी खड़े भी, फिर हमने इसकी तकलीफ को इससे हटा देते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि गोया कि इसने अपनी तकलीफ के लिए जिसे पहुंची थी कभी हमें पुकारा ही ना था। इन हद से गुजरने वालों के अमाल को इनके लिए इस तरह खुशनुमा बना दिया गया। अल्लाह हमारे लिए कभी बुरे अमाल को खूबसूरत ना बनाए। और हमने तुमसे पहले भी बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि इनके पास इनके पैगम्बर भी दलाल लेकर आए, और वो ऐसे कब थे कि ईमान ले आते, हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की सजा देने का अंदाज यहाँ बता दिया गया। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन तकलीफों बीमारियों और परेशानियों में अल्लाह ताला का कुर्ब दे। हर वक्त जो रोना रोते रहते हैं, हाय ये बीमारी ये हो गई, खबरें सुन लें वो सुन लें, तो जरा अल्लाह का कुर्ब रखेंगे तो और भी ज्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आगे आयत 14-17, कुरान हर दौर के तकाजे पूरे करता है। लिख लीजिए ये जुमला, कभी किसी को बताना पड़े तो इस आयत को कोट करिएगा। सुम मजालनाकुम खलाइफ फिल अर्थ, फिर इनके बाद हमने दुनिया में बजाय इनके तुमको जानशीन बनाया ताकि हम देख ले कि तुम किस तरह काम करते हो। और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ हैं, तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं। आप नोट कीजिए, ये जुमला इस सूरत में बार बार आएगा कि जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं। यूं कहते हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा कुरान लाइए या इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप यूं कह दीजिए कि मुझे ये हक नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तरमीम कर दूं, बस मैं तो इसकी पैरवी करूंगा जो मेरे पास वही के जरिए पहुंचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूं। आप यूं कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना मैं तुमको पढ़कर वो सुनाता और ना अल्लाह ताला तुमको इसकी इत्तला फरमाता, क्योंकि मैं इससे पहले तो एक बड़े हिस्से उम्र तक तुम में रह चुका हूं। फिर क्या तुम अकल नहीं रखते? बस इस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बतलाए? यकीनन ऐसे मुजरिमों को असलन फलाह न होगी। आपने नोट किया एक मुतालबा, कुरान को बदल दो। क्यों भाई, ये तुम्हारे किसी बड़े की लिखी हुई किताब है कि बदल दो? बिल्कुल वो दौर था कि जब लोगों को कुरान के अहकाम अच्छे नहीं लगते थे। आज भी यही मुतालबे हैं। सूरत तौबा को निकाल दो, पर्दे की आयतें निकाल दो, सूद की आयतें निकाल दो और मिक्सिंग की आयतें निकाल दो और ये तो खूनी किताब और फुलां किताब। तो याद रखिए कि आज के दौर में हमारा भी जिहाद चाहिए कि लोगों को इस किताब की दावत दें कि इसके अंदर कितनी खूबसूरतियां हैं। फिर आयत 18 से 20, इस्लाम दीने दलील है। वह याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम, और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो इनको न जरर पहुंचा सके और न इनको नफा पहुंचा सके, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज की खबर देते हो जो अल्लाह ताला को मालूम नहीं, यानी है ही नहीं वो चीज। मुराद ये है न आसमानों में और न जमीन में, वो पाक है और बरतर है इन लोगों के शिर्क से। और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर उन्होंने इख्तलाफ कर लिया। और अगर एक बात न होती जो आपके अरब की तरफ से पहले ठहर चुकी है, तो जिस चीज में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं इनका कतई फैसला हो चुका होता, यानी इख्तलाफात की कोई गुंजाइश नहीं है अल्लाह के इस दीन में। और ये लोग यूं कहते हैं कि इन पर इनके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होती? बस आप फरमा दीजिए कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है, बस तुम भी मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूं। यानी बहसों में ना पढ़ो, जब कोई आपसे दीन के नाम पे बहस करे ना, तो सलाम करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ऐसे जहन के साथ, इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कोई हिदायत नहीं लेता। और ये बहस करने वाले घर वाले भी हो सकते हैं और बाहर वाले भी। आयत 21 से 23, ईमान वाले एहसान फरामोश नहीं होते। खुद से पूछिए, मैंने कभी किसी के एहसान की नाफरामोशी तो नहीं की? और सबसे बड़े एहसानात जो माँ बाप के हैं, कहीं उनको तो पीछे नहीं डाल दिया? उस्तादों के हकूक हमने कहीं पामाल तो नहीं किए? शोहरों के और अपने ससुराल वालों के एहसानात के हमने बुरे बदले तो नहीं दिए उनको बातें कर करा के? बच्चे कुरान ही कायना है, इसमें अपने आप को देखते जाइए। वैजा जख्नन्ना सराहमत, और जब हम लोगों को इस अमर के बाद कि इन पर कोई मुसीबत आ चुकी हो किसी नेमत का मजा चखा देते हैं, तो वो तो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में चालें चलने लगते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज्यादा तेज है, बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। 3 सेकंड तक गौर कीजिए किरामन कातिबीन को जहन में लाते हुए। हर अच्छी बात सोची हुई भी, बोली हुई भी, देखी हुई भी, लिखी हुई, पढ़ी हुई, सब नोट करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने जिस्म की हर उसकी हिफाजत की तौफीक दे। वो अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुश्की और दरिया में चलाता है, यहां तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियां लोगों को मुवाफिक हवा के जरिए से ले चलती हैं, और वो लोग इनसे खुश होते हैं। इन पर एक झोंका सख्त हवा का आता है और हर तरफ से इन पर मौजें उठती चली आती हैं, और वो समझते हैं कि बुरे आ घिरे। इस वक्त सब खाली से इतेकाद करके अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं कि अगर तू हमको इससे बचा ले तो हम जरूर शुक्रगुजार बन जाएंगे। फिर जब अल्लाह ताला इनको बचा लेता है तो वो फौरन ही जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। लिहाजा ऐसे तमाम लोगों को एक पुकार है, आप इस पुकार को अपने दिल पर लीजिएगा और अल्लाह के इस जुमले को सुन लीजिए, क्या फरमा दिया, या युहन्ना सिन्नम बख्शुकुम अलान फुसिकुम, ए लोगो ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे ही लिए वबाल होने वाली है। दुनियावी जिंदगी के चंद फायदे हैं, फिर हम हमारे पास तुमको आना है, फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ तुमको बतला देंगे। अपनी कोई सरकशी याद कीजिए, ट्रांसग्रेशन, मस्ती, मौज, हल्ला गुल्ला, फन, प्रोलिक, किसी खुशी के नाम पे, कोई शादी से पहले की रात, कोई शादी के बाद की रात, कोई खुशी का जश्न, कोई ऐसी बात, कोई किसी जज्बे में भटक गए तो फौरन कहिए अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि वो अल्लाह कहते तुम्हारे खिलाफ पड़ेगी, उसकी वजह से कोई तकलीफ दुनिया में आएगी, अल्लाह हमें बचा दे। और आगे एक खूबसूरत आयत जिस पे हमारा एक लेक्चर था, मैंने वही नाम आज भी रखा क्योंकि मुझे खुद वो लेक्चर बहुत पसंद है, अगर किसी को फायदा उठाना हो तो आपको दे दिया जाएगा। जिंदगी एक ढलता साया, लाइफ इज अ फेडिंग शेडो, ये भी ह्यूस्टन में दिया था, आजकल ह्यूस्टन याद आ रहा है काफी चीजों की वजह से, तो उसमें से एक ये लेक्चर इसी आयत पे था, देखिएगा। इन्नमा मसलुल हयात दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस समा, इस वक्त अपने आप को सामने रखिए या अपने छोटे से बच्चे को सामने लाइए, एक पूरा लाइफ साइकिल आपकी मेरी जिंदगी का बयान हो रहा है। बस दुनियावी जिंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे जमीन की नबातात जिनको आदमी और चौपाई खाते हैं खूब गुंजान होकर निकली, यहां तक कि जब वो जमीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी और इसकी खूब ज़िबाइश हो गई और इसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर बिल्कुल काबिज हो चुके हैं, तो दिन या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म यानी अजाब का पड़ा, बस हमने इसको ऐसा साफ कर दिया गोया कल वो वहां मौजूद ही ना थे। हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं। क्या आप सोचते हैं कैसे बच्चा पैदा होता है? पानी के साथ बच्चे के का आगाज है और बच्चा पैदा होता है कितना खूबसूरत मासूम फूल की तरह, फिर बड़ा होने लगता है, फिर खिंचता जाता है, फिर जवानी में हुसन आ जाता है, फिर हर चीज सजती है संवरती है, और फिर उसके बाद 30-35 के बाद फिर दोबारा हम बैक ट्रैक होते हैं और फिर बुढ़ापा वो के आके न जाए, और फिर अर्जल उम्र, न खाने का मजा न पहनने का सजा, पहन लो तो सजता नहीं, खा लो तो हजम ना हो, और इसी तरह हम कचरा बनकर हड्डियों की मुट्ठी बनकर इस दुनिया से वापस जाने की राह देख रहे होते हैं एक डेथ ट्रेन के इंतजार में। ये है आपका मेरा लाइफ स्पैन, ये है वो दुनिया जिसको दुनिया कहते हैं। आइए अब इसके बाद अगला सफर सुनिए जो उन लोगों का अच्छा है जिन्होंने तौबा के बाद अब अपनी इस्लाह की नियतें कर ली। आयत 25 से 26 में इसका पैगाम है, अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाता है, कैसे? दारुस्सलाम की तौर पे, वल्लाहु यहदु इला दारिस्सलाम, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ तुमको बुलाता है और जिसको चाहता राह रास्त पर चलने की तौफीक देता है। जिन लोगों ने नेकी की है इनके वास्ते खूबी है और मजीद इस पर भी कि इनके चेहरों पर न स्याही छाएगी और न जिल्लत, देर विल बी नो रिग्रेट ऑन देयर फेसेस, क्योंकि जिंदगी को भरपूर गुजारा, खूब मेहनत की, जान और माल पूरे दिल दिमाग से अल्लाह के रस्तों में खपा दी, और जिसको एक कई दफा के जुमलों में बोला एक पूरा लेक्चर और एक शॉर्ट क्लिप भी है इस पे, डाई एम्प्टी, खुद को खाली करके मरो। इस पे एक किसी भी साइकाट्रिस्ट होते हैं, वो कहीं किसी जगह लोगों को एक दे रहा था अपनी वर्कशॉप, तो उसमें उसने बताया था कि इंसान के जहन का सिर्फ 5% भी इस्तेमाल नहीं होता और 95% उसके साथ कब्र में जाता है, तो अगर हो सके तो जाने से पहले अपना सब दे दो। और दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह हमारा सब कुछ जो स्किल दी है वो तेरे बंदों के रस्तों में खप जाए, जो वक्त दिया वो खप जाए, जो माल दिया वो खप जाए, जो रिश्ते दिए वो खप जाए, जो घर गाड़ियां दी, अल्लाह हमारा सब कुछ हमारी जिंदगी में हमारे हाथों से ले ताकि हम दुनिया से जब जाए तो खाली जाए, जाया करना तो क्या फायदा हुआ। अल्लाह ताला हमें इस रिग्रेट से बचाए, फिर उस जन्नत में जाकर रहेंगे, वहां सोएंगे ना, खाएंगे भी पिएंगे भी, वहां बहुत कुछ है। आज मरेंगे हमारी ईद शुरू हो जाएगी, आज मरेंगे कल पार्टी ड्रेस, आज मरेंगे कल फन फ्रॉले खुशी गम, हालांकि मजा तो इसमें बहुत आने लग गया, लेकिन चलिए वो मजे अगर किसी को मिस होते हैं तो फिर उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इस दुनिया की जिंदगी को भरपूर गुजारने की तौफीक दे। ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। आप देखिए कि इस आयतों को पढ़ने के बाद आपके मेरे दिल में क्या ख्याल आना चाहिए कि हम खुद को वहां खड़ा करें और महसूस करें और देखिए कि जो लोग दुनिया में जैसी जिंदगी बसर करके जा चुके होंगे ना, उनको वहां वैसा ही होगा। और वहां हकीकत यह है कि हर एक के साथ मामला उसकी मर्जी का नहीं, अल्लाह की मर्जी का होगा। आज दुनिया में इख्तियार मौजूद है, जो आप करना चाहें कर लीजिए, और जो अल्लाह ताला आपके साथ मामला करे उसको देखें। देखिएगा आपके लिए आई 25 पे यहदी मैं यशाउला सिरात मुस्तकीम। तौफीक और हिदायत अल्लाह के हाथ में, हिदायत की आयतों में से एक हिदायत। अल्लाह हिदायत देकर फितनों और गुमराहियों से निकालता है, दुनिया के मुकाबले में दारुस्सलाम की दावत देता है। सिरात मुस्तकीम जन्नत का रास्ता कुरान के रास्ते से गुजरता है, हिदायत देकर अबदी अमनो सलामती की दावत देता है। अब बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद अब आपके कोर्ट में है। आप किधर डालते हैं अपने आप को, खपाते हैं, जाया करते हैं। यू आर किलिंग योर टाइम और यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। बहुत सारे लोग जिंदगी को सिर्फ जाया कर रहे हैं, बेगार की काट रहे हैं, वक्त जाया करते हैं, घंटों ड्रामे फिल्मों में वक्त जाया करके एंड पे मिला क्या, सर दर्द और आंखों की तकलीफें। आगे आ रहा है 27 से 30 जहन्नुम के कुछ मनाजिर, बड़े शदीद मनाजिर हैं, क्योंकि रियलिटी है, इस पे किसी को कोई मफर नहीं। वल्लज़ीन कसबुस सैयात जज़ाउ सैयातिन बिमिस्लिहा, और जिन लोगों ने बुरे काम किए इनकी अबदी सजा इसके बराबर मिलेगी, और इन पर जिल्लत छाएगी, इनको अल्लाह ताला से कोई न बचा सकेगा, गोया इनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए हैं। सोचिए जिस रात में न चांद हो न सितारे हो, तवा आता है मेरे जहन में इस आयत को पढ़ के, ब्लैक, रिग्रेट, गम, डिप्रेशन, अंधेरों पे अंधेरे, क्या करके आगे इतनी बड़ी हकीकत को भूली हुई थी। आज भी दुनिया में कभी नुकसान होना तो बंदे के ऊपर ये रिग्रेट आता है, चेहरा उतर जाता है, सारी जिंदगी तो जाया करके आगे और जीने की राह तो आगे थी और यहां तो अंधेरों के अंधेरे हैं। ये लोग दोजख में रहने वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। एक हमारा स्कूल था तो उसमें 2-3 जगह छोड़कर वहां नाइट क्लब था, एक स्ट्रिप मॉल था तो उसके साथ ही था। आते जाते वहां से जब गुजर होता था तो मैं देखती थी अंधेरा, डार्क, और अंदर जिन्नों वाली और अजीबो गरीब आवाजें। जिनको दुनिया में अंधेरे और डार्क नाइट अच्छी लगती है ना, क्या बत्तियां बुझा दो, अब नफ्स को राजी करेंगे तो कल अल्लाह फिर उनको जहन्नुम में डाल करके एक अब और खुशी मना लो। और वो दिन भी काबिले फिक्र है जिस रोज हम सबको जमा करेंगे, फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह पे ठहरे रहो, फिर हम इनके आपस में फूट डाल देंगे, और इनके वो शुरका कहेंगे कि क्या तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, सो हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है गवाह के तौर पर कि तो हमको तुम्हारी इबादत की खबर ना थी। ये किसकी बात है आपको था? नेक बुजुर्ग, अच्छे बुजुर्ग औलिया कराम जो दुनिया से गुजर गए और आज लोगों ने उनकी कब्रों को पूजा पाठ की जगह बना लिया। कल वो साफ कह देंगे हमें तो नहीं पता तुम क्या करते थे, क्योंकि वो तो तौहीद वाले थे, वो तो अल्लाह को राजी करके गए थे, लोगों ने आज उनके साथ जो किया वहां जाके क्या होगा। इस मुकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए गुनाहों को जांच लेगा, और ये लोग अल्लाह की तरफ जो इनका मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे, और जो कुछ झूठ बांधा करते थे सब इनसे गायब हो जाएंगे। अल्लाह उम्मत को शिर्क के ये अंधेरों से निकाल दे ताकि कल जहन्नुम के अंधेरों में जाने से बच सके। आगे आए 31 से 36, हिदायत चाहने वालों को मिलती है, चाह लें जल्दी से चाह लें। 11 पारे होने लगे हैं, अल्लाह करे कि अब हमें हिदायत मिल जाए। कुल मई यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, आप कहिए वो कौन है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क पहुंचाता है, या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है, और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और वो कौन है जो तुम्हारे कामों की तदबीर करता है। जरूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह, और क्या जवाब दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा तो कोई ये कर नहीं सकता। तो इनसे कहिए फिर क्यों नहीं डरते, क्या पता चला कि जब तौहीद रबूबियत को मानते हैं तो अल्लाह ताला की हाकमियत को भी मानने की जरूरत है। सो ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब हकीकी है, फिर हक के बाद और क्या रह गया बजुस गुमराही के, फिर कहां फिरे जाते हो। इसी तरह आपके रब की ये बात के ईमान न लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है। यहां जरा सा दर्द महसूस कीजिए ऐसे लोगों का कि जिनको मौका भी मिल रहा है हिदायत की बात सुनने का आने का, इस तरह फिर भी नहीं सुनना चाहते कि नहीं सुनने के बाद जिंदगी मुश्किल होगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी और अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। फरमाया, आप यूं कहिए, क्या तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है जो पहली बार पैदा करे फिर दोबारा भी पैदा करने वाला हो? आप यूं कहिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा, फिर कहां फिरे जाते हो? तो आइए आयत 35 पे। आप कहिए कि तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है कि हक का रास्ता बताता हो? आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है, तो फिर आया वो शख्स जो हक का रास्ता बताता हो वो ज्यादा इत्तेबा के लायक है या वो शख्स जिसको बगैर बताए खुद ही रास्ता न सूझे? बस तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कैसे फैसले करते हो? इनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं, हालांकि गुमान हक की मार्फत में कुछ काम नहीं दे सकता। ये जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह को सब खबर है। यहाँ हिदायत का एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता नजर बयान कर दिया गया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अब हिदायत की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम रुके नहीं, बल्कि मजीद हिदायत को लेने की तरफ बढ़ते ही जाएं। आयत 37 से 41 दस्तूर इलाही, गौर से सुनिएगा, फिर इसमें आपको अमल की एक बात मिलेगी जो इन पे जिक्र करूंगी। वमा कान हाजिल कुरान युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह की वही के बगैर अपने हीप से घड़ लिया गया हो, बल्कि ये तो इन किताबों की तस्दीक करने वाला है जिससे कबल नाजिल हो चुकी थीं और अहकाम जरूरिया की तफसील बयान करने वाला है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इतराज करते थे नबी पे, खुद बोलते हो आपको कोई सिखाता है, कोई अजमी सिखाता है, वो फलां सिखाते हैं, तो अल्लाह कह रहे कि नहीं, ये कलाम मेरे नबी का नहीं बल्कि मेरा है। क्या ये लोग यूं कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया है? आप कह दीजिए फिर तुम इसके मिसल एक ही सूरत लाओ और जिन जिन गैर अल्लाह को बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो, बल्कि ऐसी चीज को झुटलाने लगे जिसको अपने हाथा इल्मी में नहीं लाए, और खनूस इनका इसका आखिर नतीजा ही नहीं मिला, यानी अभी तक इनको एंड भी नहीं पता। जो लोग इनसे पहले हुए इस तरह उन्होंने भी छुटलाया था, बस देख लीजिए इन जालिमों का अंजाम क्या हुआ। सूरत बकरा में हमने एक चैलेंज देखा था, वो इनको फातु भी सूरत है। यहाँ दूसरी जगह फिर चैलेंज आ गया कि चलो तुम ऐसा करो कि तुम एक सूरत ले आओ। दो जगह आगे भी आएगा, सूरत हूद में आएगा, सूरत बनी इसराइल में आएगा, लेकिन आज तक कुरान का कोई मिलता जुलता वर्जन भी नहीं ला सका, क्योंकि बल हुआ कलाम अल्लाह। और आप और मैं इस वक्त ये पढ़ें, खुद को मुबारक दें, अपनी कुछ खुशकिस्मती पे नाज करें। कहीं तर्जमा सुनते वक्त आप इधर उधर तो नहीं देखने लग जाते कि चलो अब मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों सुनूं, ये तो मुझे आता ही है। ये अल्लाह का कलाम है जिसका कलाम आज हमारी जुबानें और हमारे कानों पे है। अल्लाह ताला हमें इसका हक अदा करने वाला बना दे। और इनमें से बास ऐसे हैं जिस पर ईमान ले आएंगे और बास ऐसे भी हैं किस पर ईमान नहीं लाएंगे, और आपका रब फसाद करने वालों को खूब जानता है। यानी ये फैक्ट है, कुछ न कुछ लोग तो वाकई फिर भी नहीं मानते। और अगर आपको झुटलाते रहें तो ये कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूं। ये कौन सा वक्त होता है जब लोग इतनी कठहुज्जतियां कर देना हुज्जतों में, फिर ज्यादा बहस ना किया करें। आप में से भी अक्सर लोग पूछते रहते हैं, फलां को बताया, फलां चिढ़ते हैं, जो चिड़े उसको छोड़ दीजिए, हुज्जत तमाम हो गई, क्योंकि वमा अलैना इल्लल बलाग। आयत 42 से 44 टॉपिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर अमल ना करना, ऐसे लोग कौन है? वमिन्हु मन यस्तमीउना इलैक, और इनमें से बाज ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाए बैठे हैं। देखने में तो लग रहा है कि सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि नहीं सुन रहे। इस पर कमेंट है क्या कि आप बहरों को सुनाते हैं, वो इनको समझ भी ना हो, और इनमें से बाज ऐसे हैं कि आपको देख रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखलाना चाहते हैं वो इनको बसीरत भी ना हो? क्या पता चला कि बहुत सारे सुनने वाले सुन नहीं रहे होते और बाज सिर्फ बैठकर देखने वाले लोग होते हैं? हदीस सुन लीजिए, इस पे बहुत ज्यादा इंसान को खौफ आता है अपने बारे में। आयत 2674 सुनन तिर्मिज़ी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया तो जो लोग इसकी पैरवी करेंगे इनके अजर के बराबर हिदायत की तरफ बुलाने वाले को भी सवाब मिलेगा। بغیر اس کے کہ اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی ہو، اور جس نے دلالت اور گمراہی کی طرف بلایا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے گناہوں کے برابر گمراہی کی طرف بلانے والے کو بھی گناہ ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں میں کچھ کمی ہو۔ کیا دل چاہ رہا ہے؟ کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے لگ جاؤں، یہی دل کرتا ہے نا، زندگی کا تو مقصد یہی ہو۔ تو یہاں ایک غلط فہمی بول دوں، آپ میں جتنے ساتھی جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح یہ بات پڑتا ہے، لیکن جو نئے لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ اس وقت میں ہدایت کی یہ کتاب آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اور اگر آپ کو ہدایت مل رہی ہے تو وہ میرے وسیلے سے یا میرے توسط سے، تو تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کیجئے۔ میں بھی ہوں انشاءاللہ، اللہ مجھے سیدھا رکھے، میری نیت ٹھیک ہو، لیکن اس کے ساتھ ہر وہ ساتھی، ہر وہ انصار اللہ، ہر وہ آن جاب شخص ہے کہ جو اس وقت بھی اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، بن رہا ہے، جو کر چکے، جو اس وقت کر رہے ہیں، جو اس کے بعد اس پہ کام کریں گے، وہ سب بھی اس میں حصے دار ہیں، اور اللہ سب کو ایک جتنا اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اللہ کرے کہ وہ لوگ جو اس میں بیک بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں، ان کو مجھ سے بھی زیادہ اجر دے دے، اگر کوئی مجھے اجر ملتا ہے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ان کو نہ پکڑے، اور ہم سب کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ خالص کر دے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں ایک عجیب سی چیز آ گئی، پڑھاؤ، پڑھانے والے کا اجر ہے، صحیح پڑھائیں گے تو اجر ہے نا، غلط تو نہیں ہے، ٹھیک پڑھیں گے تو پھر ہے نا، آدھی بات صحیح، آدھی نہیں، آدھی غلط، ٹوٹی پھوٹی، ادھوری باتیں، کمی بیشی۔ وجہ کیا کہ ہم نے شروع سے سنا یہ ہے کہ قرآن پڑھانے والے کا اجر ہے، اور میرا جتنا شرح صدر اس پہ ہے نا کہ پڑھانے کے ساتھ پڑھوانے والوں کا بھی اتنا ہی اجر ہے، اتنا الحمدللہ دل کھلتا جاتا ہے۔ اور واقعی جن پہ میں رش کرتی ہوں وہ ان پہ کرتی ہوں جو یہ سارے انتظامات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بے حساب اجر اور اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت 45، قیامت کا بیان ہے۔ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً، وہی تین سبق جو مکی دور میں تھے، توحید، رسالہ، اور یہ کیا ہے، ایمان بالآخرہ۔ اور ان کو وہ یہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ کتنا روزہ ہو گیا آج، پتہ چلا پچھلا سال کیسے پلک جھپکتے میں گزر گیا، اسی طرح میدان محشر میں کھڑے لگے گا کہ بلینک آف آئیز دنیا میں رہے۔ تو یہ عمل کا نقطہ لکھ لیجئے اپنے لیے کہ پھر آج ہی جلدی سے اپنی اصلاح کیجئے۔ کتنا نہ سمجھ ہے وہ شخص کو دنیا کے چار دن کے فائدے کی خاطر نہ ختم ہونے والی عبد الآباد تک رہنے والی آخرت کو بیکارتے، اور اللہ ہمارے ان سب ساتھیوں کو غلط چیزوں سے نکال کر صحیح چیزوں پہ لے آئے جو اپنی زندگی کو آگ لگا رہے ہیں۔ آیت 46 سے 56، حق فتح مند اور باطل ناکام ہوتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سب افعال پر گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو ان کا رسول جب آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو آپ فرما دیجئے، میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور ضرر کا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا، مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کی میری موت کا وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ دعا کریے کہ اللہ ایمان کی موت نصیب کر دے۔ اچانک آ گئی تو جو کام کر رہے ہیں اسی پہ جائیں گے، اچھے کام کر رہے ہیں تو اچھے کاموں پہ موت کی امید رکھیے، اور اگر برے کام کرتے ہیں تو اس پہ موت کی امید رکھیے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے۔ کیسی دو ٹوک باتیں قیامت کے دن، یعنی ایسے مجھے لگ رہا ہے میدان محشر میں سے گزر رہے ہیں، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں سچ ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے، ہاں قسم میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اگر ہر جان جس نے ظلم یعنی شرک کیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دیکھ کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ دعا کیجئے جو انسان شرک میں بڑھ چکے ہیں اللہ ان کو اس سے نکال دے، ہر طرح کے ظاہری باطنی خفی شرکوں سے اللہ نکال دے، اور آخرت بڑی سخت ہے، اللہ ان کو بھی نکال دے جو حقیقت میں خود کو مشرک تو نہیں کہتے لیکن وہ اسلام سے باہر ہے۔ اللہ اگر اس اسلام کی بات کو سننے کا ہمیں موقع دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے دروازے کھول دے۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ بعض وقت دنیا کی چیزیں ہمارے پاؤں کی رکاوٹ ہیں، اسی کا جواب ہے یہ۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم نہیں رکھتے، وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ جب جان کے آنے اور جان کے جانے کے لیے اس کے محتاج ہیں تو بتائیے پھر اس جان کو اس کے رستے میں کیوں نہ بیچ دیں، کیونکہ اس نے جانے اور مال آپ کے مانگے ہیں۔ اب دیکھتے پارے کے اینڈ تک آپ کا کیا جواب آتا ہے، کیا آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں کہ نہیں، اور اگر آپ کو کوئی راستہ چاہیے تو اس میں آپ کی مدد تو کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ والنٹیئر فارم ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، آپ میں کسی کے پاس کوئی سکل ہے جو آپ اللہ کے رستے میں کھپانا چاہتے ہیں، نیت سچی ہے اچھی ہے ارادہ ہے، اکیلے کام ہو نہیں پا رہا، تو بسم اللہ کیجئے، آپ فارم فل کریں، اس کے بعد آگے انشاءاللہ آپ کو راستے سوچتے ہی جائیں گے۔ پھر آیت 57 سے 58، یہ ہے جی نور القرآن کی تھیم آیت، قرآن میرے دل کی بہار، اور اس میں میرا فیورٹ لیکچر ہے۔ اگر آپ بھی مجھے کہیں آج کل دور قرآن کے بعد ساتھ اور کیا سنو، تو میں کہوں گی اس لیکچر کو سنیں، یا پھر ان کو جو دور قرآن نہیں سننا چاہ رہے کہ بہت لمبا ہوتا ہے اور بہت مشکل ہے تو ان کو کیا دے، تو ان کو یہی سنوا دیجئے۔ کیسے؟ قرآن کی عظمت کا بیان ہے، یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے کئی درجے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اپنے دل کے بند دروازے کھولیے، اللہ کی کتاب نوک کرتی ہے، کھٹ کھٹ کھٹ، ہدایت اندر آنا چاہتی ہے، بس دروازہ آپ اندر سے کھولیں، کیونکہ دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے، اس کا ہینڈل باہر نہیں اندر ہے۔ باہر سے کوئی نوک کر سکتا ہے، آپ کو ہدایت کی طرف بلا سکتا ہے، لیکن کھولنا دروازہ آپ نے خود ہے۔ آیت 59 سے 60، ہر چیز حلال ہے مگر وہ جسے شریعت حرام قرار دے دے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق، آپ بتلائی، آپ کہیے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا، آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر ہی بہتان کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے، یعنی اس دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر لے۔ آیت 61، زمین و آسمان میں جو ہے کتاب مبین میں درج ہے۔ وما تکون فی شانم وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ کسی حال میں ہوں، آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے، تو کیا اس کو آپ کے میرے دل میں جو ہے وہ نہیں پتہ لگے گا؟ तो अल्लाह के लिए कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आगे है जी आयत 62 से 65, इंडेक्स में लिख लीजिए अपने वलीउल्लाह कौन। बस लोग कहते हैं वलीउल्लाह कुछ नहीं होते। कैसे नहीं होते? कुरान बता रहा है आपको कि वलीउल्लाह होते भी हैं और कौन होते हैं। आइए देखिए, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो कि अल्लाह के वलियों यानी अल्लाह के दोस्तों पर कोई अंदेशा है ना कोई गमगीन है वो, यानी ना तो कोई अंदेशा है और ना वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज करते हैं। इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। और आपको इनकी बातें गम में न डालें, तमाम तर गलबा अल्लाह ही के लिए है, वो सुनता और जानता है। आज के दौर का वलीउल्लाह वो जो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ ले, हराम से बच के हलाल पे आ जाए और अपनी जिंदगी को जाया करने की बजाय बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करे। और हदीस से पता चलता है वो लोग जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, यानी वो लोग जो अल्लाह की याद दिला दें, वो अल्लाह की विलायत में हैं। और अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे कि जिससे हम अल्लाह ताला की विलायत में आ सकें। आयत 66 से 70, जन और गुमान बदतरीन गुनाह है। अला इन लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्थ। याद रखो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, ये सब चीजें अल्लाह ही की हैं। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं, किस चीज की पैरवी कर रहे हैं? महज बेसनत ख्याल का इत्तबा कर रहे हैं, महज बेसनत ख्याल का इत्तबा कर रहे हैं और महज अटकलें लगा रहे हैं। देख लीजिए, कुरान के अलावा हर चीज अटकल है। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन भी इस तौर पर बनाया कि देखने भालने का जरिया है। तहकीक इसमें दलाइल हैं इन लोगों के लिए जो सुनते हैं। कौन से लोग? आप जैसे लोग जो इस वक्त भी सुन रहे हैं, थकन भी हुई होगी तो भी सुनते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। सुभान अल्लाह, वो तो किसी का मोहताज नहीं, इसकी तो मलकियत है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं कि अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसका तुमको कोई इल्म नहीं? आप कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करते हैं वो कामयाब ना होंगे। ये दुनिया में थोड़ी सी ऐश है, फिर हमारे पास इनको आना है, फिर हम इनको इनके कुफर के बदले सख्त अजाब चखाएंगे। क्या लिया माँ ने पेट में इसलिए रखा कि आग में जाओ? बाप ने इसलिए खिलाया पिलाया कि आग में जाओ? अल्लाह ताला हर एक को जहन्नुम के अजाब से रुखसत करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चंद वाक्यात अंबिया कराम के नाते से, आयत 71 से 97, अंबिया कराम के तस्करे। और तस्करों में यहां भी तरतीब जमानी में सबसे पहले हजरत नूह का किस्सा। वत्लु अलैहिम नबा नूह इज़ क़ाला लिक़ौमिही या कौमी। और आप इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह ताला ही पर भरोसा है। तुम अपनी तदबीर अपने शुरका के साथ मिलकर पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बायस न होनी चाहिए, फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझको मोहलत न दो। क्या पता चला, हर दौर में चाहे वो हजरत नूह का दौर था या आज का दौर हो, लोगों को नसीहत की बात सुनना अच्छा नहीं लगता। आप देखिए, बचपन में हमें भी अच्छा नहीं लगता था माँ बाप का रोक टोक करना या उस्तादों का कुछ कहना, लेकिन बाद में वो चीजें आपको फायदा देती हैं। तो कभी कभी सख्त बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। और अगर आज हम ना सुनेंगे तो क्या बच जाएंगे? जब बच नहीं सकते तो फिर सुनना बेहतर है। ये तो ऐसे ही कि एक मरीज डॉक्टर से कि मुझे मत बताओ कि मुझे कैंसर है, जब मरेगा तो फिर रोएगा ना। तो आज दुनिया में इस किताब को पढ़ना बेहतर है बाद में हलाक होने से। फिर भी अगर तुम एतराज ही किए जाओ तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मे है और मुझको हुक्म किया गया कि मैं मुसलमानों में से रहूं। बस वो लोग इनको झुटलाते रहे, बस हमने इनको और जो इनके साथ कश्ती में थे निजात दी और इनको जानशीन बना दिया, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था इनको गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कि कैसा इंजाम हुआ इन लोगों का जो डराए जा चुके थे। फिर नूह अलैहि सलाम के बाद हमने और रसूलों को भी इनकी कौमों की तरफ भेजा, बस वो इनके पास रोशन दलीलें लेकर आए, बस जिस चीज को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया ये ना हुआ कि फिर इसको मान लेते। ये नोट कर ले नुक्ता, लोगों की ये कमजोरी होती है, इफ आई से नो दैट इज नो, यानी मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी, असल में ये भी एक अना होती है। अल्लाह ताला इसी तरह हद से बढ़ने वालों के दिलों पर बंद लगा देता है। आयत 74 में कल्ब है, अल कल्बुल मतबू अलही कजालिक नतबउ अला कुलूबिल मोतदीन। तो देखिएगा कि अल्लाह के हुक्म से तजावुज करने वाले गुमराहियों में गरक रहने वाले होते हैं और ख्वाहिश नफ्स के पीछे भागने वाले होते हैं। 3 सेकंड जरा इस पे गौर करके अपने आप को ढूंढिए, अगर नहीं है तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इन पैगम्बरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और इसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, बस उन्होंने तकब्बुर किया और वो लोग ही मुजरिम थे। फिर जब इनको हमारे पास से सरीख दलील पहुंची तो वो लोग कहने लगे कि यकीनन ये सरीख जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम इस सरीख दलील की निस्बत जबकि तुम्हारे पास पहुंच चुकी ऐसी बात कहते हो, क्या ये जादू है, हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। वो लोग कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको इस तरीके से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, वही धान के पान बड़ों की बातें करके खुद को हिदायत से दूर करना, और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए, यानी दीन की बात कहने वाले पे इल्जाम लगाना, और हम तुम दोनों को कभी न मानेंगे, ढिठाई। और फिरौन ने कहा मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो। फिर जब जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। यह है नबी का कॉन्फिडेंस, एतमाद, हक वाले के बस बड़ा एतमाद होता है। बस जब उन्होंने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम लाए हो जादू है, यकीनी बात है कि अल्लाह इसको भी दरहम बरहम किए देता है, अल्लाह ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता, और अल्लाह ताला हक को अपने फरमान से साबित कर देता है, वो मुजरिम कैसा ही नागवार समझे। क्या पता चला हक हक है, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे ये जाहिर होके रहेगा। बस मूसा अलैहिस्सलाम पर इनकी कौम में से सिर्फ कदरे कलील आदमी ईमान लाए, वो भी फिरौन से और अपने हुक्काम से डरते डरते कि कहीं इनको तकलीफ पहुंचाए। और वाकई में फिरौन इस मुल्क में जोर रखता था और ये भी बात थी कि वो हद से बाहर हो जाता था। लोगों का डर हिदायत का शौक छीन लेता है, यहां से यही समझ आता है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इसी पर तवक्कुल करो अगर तुम मुसलमान हो। तो देखिए आयत 84 में अल कल्बुल मोमिन, क्या होता है मोमिन का दिल, जब दिल में ईमान आता है ना तो तवक्कुल इल्लाह होता है। क्योंकि वकाल मूसा या कौमीन कुन तुम आमन तुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलु इन कुन तुम मुस्लिमीन। फिर पूरी कोशिश करने के बाद अपने काम अपने उमूर अल्लाह पे छोड़ दिए जाएंगे। मोमिन कौन होता है, कोशिश करता है फिर बाद में कहता है अल्लाह तू जान मैंने जो करनी थी कोशिश कर ली, और अल्लाह सुभान तआला के हर फैसले को तस्लीम और रजा से लिया जाता है। अल्लाह हमें मुस्लिम बना दे। उन्होंने अर्ज किया कि हमने अल्लाह पर ही तवक्कुल किया, ऐ हमारे परवरदिगार हमको इन जालिमों के लिए फितना न बना और हमको अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से निजात दे। आपके लिए तरतीब से आई हुई दुआ सूरत यूनस आयत 85-86 रब्बना ला तजलना फितनतन लिल्कौमिज़्ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल्कौमिल काफिरीन। ऐ हमारे रब हमें जालिम लोगों के लिए फितना न बना और अपनी रहमत से हमको काफिरों से निजात दे। आमीन कहिए। आज के दौर में इस दुआ के पढ़ने की बड़ी जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को, क्योंकि आज हम पूरी दुनिया के लिए एक आजमाइश बने बैठे हैं। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो और तुम सब अपने इन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो और नमाज के पाबंद रहो और आप मुसलमानों को बशारत दे दें। और मुसलमानों ने अर्ज किया कि हमारे रब तूने फिरौन को और इसके सरदारों को सामान सीनत और तरह तरह के माल दुनियावी जिंदगी में दिए, ऐ हमारे रब इसी वास्ते दिए हैं कि वो तेरी राह से गुमराह करें, ऐ हमारे रब इनके मालों को नीस्त व नाबूद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे सो ये ईमान न लाए यहां तक के दर्दनाक अजाब को देख ले। ये थी वो बातें जिसके बाद फिर इस कौम पे अजाब आया। तो आयत 88 में आपने देखा अलकलबुल मतबू अलै रब्बनत मिस अलाम वालिहिम वश्तुदला खलूबिहिम फला यूमिनु हत्ता यरवुल अजाब अललीम। क्या पता चला कि कौमों पे जब इखलाकी बिगाड़ आता है तो उसके कुछ मुहरिकात होते हैं, कैटलिस्ट, यानी कौमें इखलाकी तौर पे क्यों बिगड़ती हैं। दो बड़ी वजह आपको इस वाक़े से दिखी, हुब्बे जाह और हुब्बे माल, या कोई ओहदा चाहिए होता है बड़ाई को सदारत वजारत और या माल चाहिए। आज भी हक समझ आने के बाद कितने लोग क्यों ठुटक के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अभी माली नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं अभी ये ओहदा नहीं छोड़ सकता और ये वो, और इतने में फरिश्ता अजल आता है और इंसान को दुनिया से ले जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, बस तुम साबित कदम रहो और इन लोगों की राह न चलना जिनको इल्म नहीं। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर इनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहां तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा आमंतु। ये है फिरौन की तौबा। क्या फायदा, जरा सा देर करने से पहले जल्दी कर लेता तो बच जाता। मैं ईमान लाता हूं कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं इसके सिवा कोई माबूत नहीं और मैं मुसलमानों में से हूं। देखिए फिरौन को भी उस वक्त जो नाम सूझा वो मुसलमान ही सूझा, कोई फिरका वारियत वाला नाम नहीं दिखा। तो अब अल्लाह को क्या कबूल कर लेना चाहिए था इसकी बात को? ये कैसे हो सकता है? पुलिस को आता देखकर चोर कहे कि मुझे छोड़ दो, तौबा नहीं करूं, तौबा करता हूं, तो बताइए कि वो जिनका माल चोरी किया और जिनका नुकसान किया उसका क्या बनेगा? तो जवाब वही आया जो ऐसे वक्त में आता है और तौबा का दरवाजा गरगरे तक रहता है। अपने लिए अमल लिखिए, मुझे क्या पता अचानक मौत है, अब अचानक आ रही है और जवान मौतें कसरत से हो रही हैं, ये भी याद रखिए। खड़े बैठे लोग जा रहे हैं। कल हमारी एक बहुत ही अजीज साथी स्टूडेंट हैं, उनकी डेथ हुई, मैं उनके बारे में आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, एंड तक मेरे साथ रहिएगा, आपको सुनाऊंगी कि क्या थी वो और किस तरह उनको मौत आई। हो सकता है आपके मेरे किसी और की हिदायत का जरिया बन जाए उनका वो, उनके बारे में जो साथियों ने बताया, और हम उनके लिए फिर दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिरौन ने बड़ी देर की, जरा से जल्दी कर लेता तो बच जाता। फरमाया जवाब दिया गया अभी मान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में दाखिल रहा, बस आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू इनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बात हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। फिरौन की आंखों पे इतने मोटे मोटे पर्दे पड़ गए कि उसको अल्लाह नजर ही ना आया। और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया और हमने इन्हें पाकीजा चीजें खाने को दी, बस उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया यहां तक कि इनके पास इल्म पहुंच गया। यकीनी बात है कि आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन इन उमूर में फैसला करेगा जिन पर वो इख्तलाफ करते थे। फिर अगर आप इसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा है तो आप इन लोगों से पूछ देखिए, वो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है, आप हरगिज शक करने वालों में न हो। कॉन्फिडेंस रखिए कि आप दुनिया की बेहतरीन किताब पढ़ रहे हैं इस वक्त भी, और न इन लोगों में से हो जिन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाया, कहीं आप खसारा पाने वालों में से न हो जाएं। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी है वो ईमान न लाएंगे, वो इनके पास तमाम निशानियां पहुंच जाएं जब तक के वो दर्दनाक अजाब को न देख ले। आगे कौम यूनस की तौबा का तज़किरा जिसके ऊपर ये सूरत है, फलौला कानत करयतना मनत फनफहा ईमानुहा, چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو فائدہ دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ انہوں نے تو اپنے بت توڑے تھے، اپنی غلط چیزیں چھوڑ کر جنگلوں میں آگے۔ آج اس وقت امت مسلمہ کو بھی اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، یا نیت کیجئے اجتماعی توبہ کی، اللہ کے آئے ہوئے عذاب ٹل جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے اللہ، اگر یہ وبا تیرا عذاب ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہم سے اس کو دور کرتے۔ آیت 98 میں آپ نے القلب المومن کو دیکھا، ولما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال دیتی ہیں دو چیزیں، نمبر ایک اجتماعی توبہ اور استغفار کرنا، اور خالص نیت سے ایمان قبول کرنا، یعنی پچھلی زندگی کے صفحے کو پھاڑ دیجئے، ورقہ پلٹ دیجئے یا پھاڑ دیجئے، آپ نے گناہوں کی ساری یادگاریں ختم کر دیجئے تاکہ دوبارہ اس طرف پلٹنا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کے اوپر آئی ہوئی تکلیفوں کو ٹال دے گا۔ اور اب سورت کا تتیمہ ہے 99 سے 100، انسان مجبور کل نہیں ہے، اختیار دیا گیا۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے، گندے دل، نجس، کچرا، ٹریش، ایسے لوگوں کے دل جدھر کفر بستا۔ اور 101 سے 105، مومنین کی نجات کیسے؟ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے تم غور تو کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانی اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جن سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آج بھی اس اضطراب کے دور میں آپ اپنے ایمان کی بنیاد پہ مطمئن رہ سکتے ہیں، یہ آیت اس بات کی گواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، ان معبودوں کی عبادت شک میں ہو، تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں فوکس کر دے۔ اور آیت 106 سے 109، ایمان والے کا عقیدہ۔ صرف اللہ قلوبہم بینہم قوم لا یفقہون، اور اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نفع نہ پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ ذرا سا تکلیفوں کو ذہن میں لا کر اب آخری آیتیں سنیے پارے کے اختتام پہ۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، سچ ہے، 100% سچ ہے۔ اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ کیا پتہ چلا، لوگوں کا ڈر دل سے نکال دیجیے اور لوگوں سے امیدیں چھوڑ دیجیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، یہ پہنچ گیا نا، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے بس وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ رہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کی پیروی کرتے رہیے جو آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، और वो सब फैसला करने वालों में सबसे अच्छा है। तो सूरत यूनुस ने आपको मुझे क्या दिया कि इस कुरान को अपनी जिंदगी में खोल लो इससे पहले कि तुम्हारे मरने के बाद कई कुरान पढ़ के तुम्हें बख्शे जाएं। जो जिंदगी में पढ़ेगा ना, बाद वालों का भी फिर उसी को फायदा देगा। एक नबी के नाम पर सूरत यूनुस थी, तो अब अगले नबी के नाम पे हूद है। यहाँ मुस्तकिल चार सूरतें आगे जा रही हैं, ये अंबिया कराम के नामों पे हैं। तो सूरत हूद का सिर्फ चंद जुमले हैं इस बारे में। पहली पांच आयतें हैं, 11 नंबर की सूरत है। अल्लाह के अंबिया में से एक नबी का नाम था, उनकी तरफ निस्बत की जाती है। अगर आप इसकी पहली पांच आयतें देखें तो कायनात की निशानियां हैं और दो मैसेज हैं आपके पास इन आयतों के, अल्लाह से मगफरत तलब करना और दीन की बात से मुंह नहीं फेरना। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्लाह से मगफरत तलब करनी है। पारे के अंत तक देखिए, इस्तग़फार और तौबा की बातें। ये एक ऐसी किताब है कि जिसकी आयतें मुहकम कर दी गई, फिर साफ साफ बयान की गई एक हकीम बाखबर की तरफ से, और ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। नबी का मुकाम मुबशिर और मुनजिर। और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ कराओ, फिर इसकी तरफ मुतवज्जे हो, वो तुमको वक्ते मुकर्रर तक अच्छा सामान जिंदगी देगा और हर ज्यादा अमल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा। और अगर तुम लोग झुटलाते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुमको लही के पास जाना है और वो हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। अब तो इस पे दिल जम गया ना, अपनी वापसी का फिक्र लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी आयत, दीन की बात से मुंह नहीं फेरना। अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन्हु। याद रखो, वो लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह ताला से छुपा सकें। याद रखो कि वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं, वो इस वक्त भी सब कुछ जानता है जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बिल यकीन वो दिलों के अंदर की बातें भी जानता है। क्या जानता है वो आपके मेरे बारे में? कि आपके अंदर ज्वार भाटे उठ रहे हैं, आपको अब अपने गुनाह चुभने लग गए हैं। यही तौबा होती है, यही पहला स्टेप होता है हिदायत पे आने का। मुबारक हो, आप मुत्तकी हो रहे हैं, आप नेक हो रहे हैं, आपको तकवा मिल रहा है और एक दिन आएगा कि आप पूरे मुत्तकी भी बन जाएंगे। और पैगाम यही है इस बारे का कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। सूरत यूनुस में हमने इतना ज्यादा मरना और अल्लाह से मुलाकात का तस्करा पढ़ा कि ये शेर लिखना पड़ा कि इस दुनिया से जाने को आखिरी अंजाम ना सोचो, इसके आगे एक नई जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी वो शुरू होने वाली है। अल्लाह ताला मुझे और आपको उसके लिए तैयार होने और उसके मुताबिक दुनिया में जीने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। ए हमारे रब, तू हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है, और हम पर रहमत और मगफरत की नजर फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।